आगे सबक देखिए भाई, फसलुन قال وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर बांदी को खावन ने तलाक़े रजई दे दी है और वो अपनी इद्दत गुजार रही है, इस दौरान आका ने उसको आजाद कर दिया तो इसकी इद्दत मुंतकिल हो जाएगी आजाद औरतों की इद्दत की तरफ, क्योंकि निकाह पूरे तौर पर मौजूद है तो अब ये तीन हैज गुजारेगी भाई। और अगर बांदी को आजाद किया गया और इसको खावन ने तलाक़े बाइन दी थी या इसके खावन का इंतकाल हो चुका था, तो अब इस सूरत के अंदर जब तलाक़े बाइन दी जाए या खावन का इंतकाल हो जाए तो इद्दत लाजिम हो जाती है, लिहाजा अब आका आजाद भी करेगा तो इद्दत नहीं बदलेगी, वही बांदियों वाली इद्दत ये गुजारेगी। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर कोई औरत आयसा है और वो महीनों के साथ उसने इद्दत गुजार ली और फिर बाद में किसी वक्त उसने खून देखा यानी उसको फिर हैज आया, तो इस सूरत में ये दोबारा हैजों के साथ इद्दत गुजारेगी भाई, क्योंकि वो जो महीने थे वो हैज का बदल थे और बदल के अंदर शर्त यह है कि वो असल पर इंसान कादिर न हो गई, और यहां तो ये असल के साथ इद्दत गुजारने पर कादिर हो गई भाई। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि वो औरत जिसने निकाह फासिद किया था या वो औरत जिसके साथ शुबा के अंदर वती कर ली गई तो उनकी इद्दत हैज के साथ ही होगी, इसलिए क्योंकि इन पर जो इद्दत वाजिब होती है वो रहम की सफाई जानने के लिए है भाई, वो निकाह का हक अदा करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहां निकाह तो हुआ ही नहीं भाई, तो लिहाजा हैजों के साथ ये इद्दत गुजारेगी। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि उम्मे वलद की इद्दत जो है वो तीन हैज हैं, और यही कौल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का, वो भी फरमाते हैं कि उम्मे वलद की इद्दत तीन हैज हैं भाई। और उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर किसी सगीर का इंतकाल हो जाए और वो अपनी बीवी को छोड़कर मर गया भाई, उसका यानी सिगर की हालत में उसके वली ने उसका निकाह करवा दिया था किसी बालिगा औरत के साथ, तो अब सगीर का इंतकाल हुआ और ये जो बीवी है ये हामिला है, तो इस सूरत में तरफैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि खावन की वफात के वक्त यह औरत चूंकि हामिला है लिहाजा इसकी इद्दत वज़ए हमल होगी, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह हमल साबितुन नसब नहीं, और इसी तरह इमाम शाफी रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं कि यह हमल साबितुन नसब नहीं, लिहाजा इस औरत की इद्दत चार महीने दस दिन होगी, जिस तरह वो औरत जो हामिला हो जाए वफात के बाद, जब खावन की वफात के बाद जो औरत हामिला हो तो जैसे वो चार महीने दस दिन के साथ इद्दत गुजारती है तो ये औरत भी चार महीने दस दिन इद्दत गुजारेगी भाई इद्दत वफात। जबकि तरफैन फरमाते हैं कि यहां पर जो इद्दत वाजिब की है अल्लाह ताला ने वो रहम की सफाई जानने के लिए नहीं है बल्कि निकाह का हक अदा करने के लिए है, तो लिहाजा चाहे औरत को हैज ही क्यों ना आ रहे हों फिर भी उसको चार महीने दस दिन ही इद्दत गुजारना पड़ती है, हैजों को शुमार नहीं करना पड़ता। और हामिला की इद्दत जो है यहां पर शरीयत ने वज़ह हमल ही मुकर्रर की है निकाह का हक अदा करने के लिए, तो लिहाजा वो ही इस औरत को गुजारना पड़ेगी भाई। और नीज इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इस हमल को जो मौत के वक्त मौजूद है इसको कियास किया था उस हमल पर जो मौत के बाद पेश आए, तो कहते हैं आप उस पर इसको कियास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वहां पर औरत वफात के वक्त हामिला नहीं थी तो इद्दत महीनों के साथ वाजिब हो गई थी, फिर उसके बाद हमल पेश आया है तो उससे इद्दत नहीं बदलेगी, जबकि यहां पर वफात के वक्त ही औरत हामिला है तो लिहाजा इब्तिदाअन ही इस पर वज़ह हमल वाली इद्दत आएगी भाई। और साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि इस पर कबीर यानी किसी बालिग की बीवी का एतराज भी नहीं किया जा सकता। बालिग के अंदर अगर उसका खावंद का इंतकाल हुआ वो बालिग था और उसकी बीवी जो है वो गैर हामिला है और उस पर महीनों वाली इद्दत लाजिम हो गई और फिर उसके बाद नया हमल पेश आया और उस औरत ने 2 साल से पहले पहले एक बच्चे को जन्म दिया, तो इस सूरत के अंदर इस बच्चे का नसब उसी खावंद से साबित हो जाएगा। वजह यह कि बच्चे का नसब साबित करने में बेइंतहा एहतियात से काम लिया जाता है कि किसी तरह बच्चे का नसब साबित हो जाए, वरना तो बच्चा जाया हो जाएगा, बच्चा हलाक हो जाएगा भाई। तो लिहाजा यहां पर भी अगरचे हमल बाद में पेश आया है लेकिन बहरहाल इसको बचाने के लिए इसके हमल को साबित माना जाएगा, तो इस औरत की इद्दत महीनों से वज़ह हमल की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। और जब इस हमल का नसब साबित हो रहा है उस मरने वाले से तो यूं ही शुमार किया जाएगा कि गोया मौत के वक्त ही यह हमल मौजूद था, तो यह हुक्म लगा दिया जाएगा। जबकि सगीर का मसला इस तरह नहीं है, वहां तो जो बच्चा पैदा होगा उसका नसब तो साबित हो ही नहीं सकता, जब नसब साबित नहीं हो सकता तो हुक्मन भी मौत के वक्त उसको हामिला करार नहीं दिया जा सकता। तो सगीर की बीवी चाहे मौत के वक्त हामिला थी चाहे मौत के बाद नया हमल पेश आया, दोनों सूरतों में हमल का नसब साबित नहीं किया जा सकता और यह वलदुज़्ज़िना ही शुमार होगा भाई। उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर कोई औरत इद्दत गुजार रही है और इद्दत के दौरान इसके साथ वती भी शुबा कर ली गई तो इस औरत पर एक और इद्दत आएगी भाई, और दोनों इद्दतों के दरमियान तदाखुल होगा, दोनों इद्दतों में तदाखुल होगा। तो अगर पहली इद्दत पूरी हो गई और दूसरी अभी भी चल रही है तो इस औरत पर वाजिब है दूसरी इद्दत को भी पूरा करना, उसके बाद ही ये आगे कहीं निकाह कर सकती है भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये दोनों इद्दतों के अंदर तदाखुल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये इबादत कफ है, रुकने वाली इबादत है। मैंने बताया था आपको कि इबादतें 2 किस्म पर हैं, कुछ इबादतें वो हैं जिनमें हमें अफ़ाल करना पड़ते हैं और कुछ इबादतें वो हैं जिनके अंदर हमें कफ करना पड़ता है यानी अपने नफ्स को रोकना पड़ता है। फेल वाली इबादत जैसे नमाज है, ज़कात है, हज वगैरह, इन सब में हमें अफ़ाल करने पड़ते हैं। और जबकि कफ वाली और तर्क वाली इबादत जैसे कि रोजा है, रोजे के अंदर हमें खाने पीने को भी तर्क करना पड़ता है और बीवी से सोहबत को भी तर्क करना पड़ता है, तो ये कफ वाली इबादत है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो इद्दत है ये भी इसी तरह औरत के लिए निकाह और खुरूज से कफ की इबादत है, निकाह और खुरूज को तर्क करने की इबादत है। तो लिहाजा जब यह इबादत है तो इबादतों में तदाखुल नहीं हो सकता, जैसे एक दिन में 2 रोजे नहीं रखे जा सकते। जबकि हम जवाब देते हैं कि ये जो इद्दत होती है इसका मकसद रहम के फारिग होने को जानना होता है कि औरत का रहम साफ है, कहीं वो हमल के साथ मशगूल तो नहीं, और उसका पता एक ही इद्दत से चल जाता है, लिहाजा इद्दतों में तदाखुल होगा। और नीज इबादत का माना इसके अंदर ताबिअ है, इसलिए क्योंकि औरत को अगर इलम ना हो तलाक का या खावंद की वफात का और कई महीने गुजर जाए तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी, अगरचे उसको इलम भी नहीं है और उसने खुरूज को तर्क भी नहीं किया। हालांकि इबादत तो बगैर नीयत के भी नहीं हो सकती और इबादत अपने रुकन के बगैर भी नहीं हो सकती, तो यहां पर भी घर से निकलने को तर्क करना और इससे रुकना ये तो रुकन था इद्दत के अंदर, लेकिन इसके बावजूद जो है इद्दत पाई गई, तो मालूम हुआ इसके अंदर इबादत का माना तबअन है। अगर ये इबादतें मकसूदा होती तो फिर तो बगैर नीयत और बगैर रुकन के ये नहीं हो सकती थी। साहिब हिदायत ने फिर यह भी बयान फरमाया कि तलाक वाली इद्दत जो है उसका सबब तलाक है, लिहाजा तलाक होते ही इद्दत शुरू हो जाएगी चाहे औरत को इलम हो या इलम ना हो, और वफात वाली इद्दत का सबब खावन की वफात है, लिहाजा खावन की वफात होते ही वह इद्दत शुरू हो जाएगी चाहे औरत को इलम हो चाहे इलम ना हो। और मैंने आपको बतलाया था कि निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं है जब तक खावंद सोहबत न कर ले, अगर सोहबत कर लेगा तो फिर इस सूरत में महर भी आएगा, अगर बच्चा हुआ तो उसका नसब भी साबित होगा, उसको वलदुज़िना नहीं शुमार किया जाएगा और नीज औरत को इद्दत भी गुजारना पड़ेगी। तो अब निकाह फासिद के बाद इद्दत कब से शुमार करेंगे? तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं आखिरी वती से, क्योंकि इस इद्दत के ये जो निकाह फासिद के अंदर इद्दत आती है ये सोहबत की वजह से आई है, लिहाजा इसको शुमार भी आखिरी सोहबत से करेंगे। हम जवाब देते हैं कि हमें आपकी बात तस्लीम है कि ये जो इद्दत आई है ये सोहबत की वजह से ही आई है और आखिरी सोहबत ही से इसको शुमार करना चाहिए, लेकिन आखिरी सोहबत का पता ही नहीं चल सकता जब तक खावंद पक्का इरादा न कर ले बीवी को छोड़ने का या काजी इनमें जुदाई न करवा दे, तो तब तक आखिरी सोहबत का पता ही नहीं चल सकता भाई। लिहाजा जब काजी जुदाई करवा देगा या ये सोहबत को तर्क करने का पक्का इरादा कर लेगा फिर ही इद्दत शुरू होगी भाई। और मैंने बताया कि इरादा वो तो दिल की बात है तो उसका तो हमें पता नहीं चल सकता, तो मतलब यह है कि वो जुबान से इजहार करे इस बात का कि बस आज के बाद मैंने इस औरत को छोड़ दिया। बात समझ में आ गई। और नीज दूसरी दलील भी दी थी साहिब हिदाया ने, कहते हैं इसलिए क्योंकि यहां पर शुबह निकाह मौजूद है और शुबह निकाह की वजह से खावन सोहबत पर कादिर है, तो सोहबत पर कुदरत ही को हकीकतन सोहबत के कायम मकाम करार दिया जाएगा। वजह यह कि जब हुक्म की इल्लत पर मुत्तले होना दुश्वार हो या मुमकिन ना हो तो फिर हुक्म का दारोमदार सबब पर हो जाता है। जैसे सफर के अंदर शरीयत ने चार रकात नमाज के बजाय दो रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, वजह यह है कि सफर के अंदर मशक्कत होती है, लेकिन मशक्कत तो हर शख्स की तबीयत मुख्तलिफ होती है, बाज लोगों को थोड़े से सफर से ही मशक्कत हो जाती है और बाजों को कई कई दिन के सफर से भी मशक्कत का एहसास तक नहीं होता, तो लिहाजा मशक्कत का तो पता नहीं चल सकता। जब हुक्म की इल्लत का पता ना चल सके तो उस इल्लत के सबब पर हुक्म का दारोमदार हो जाता है और मशक्कत का सबब सफर है, तो लिहाजा सफर पर हुक्म का दारोमदार हो जाएगा। तो यहां पर भी इसी तरह है कि ये जो खावंद और बीवी के दरमियान सोहबत है ये तो एक पोशीदा मामला है, हमें इसका पता नहीं चल सकता। तो खावंद इस निकाह फासिद की वजह से औरत पर जो सोहबत करने पर कादिर हो चुका है, तो इस कुदरत को ही हकीकत वती के कायम मकाम करार दे दिया जाएगा, इसके कायम मकाम करार दे दिया जाएगा। लिहाजा जब तक दोनों में तफरीक नहीं करवाई जाएगी या जब तक दोनों एक दूसरे को छोड़ने का पक्का इरादा नहीं कर लेते तब तक ये वती पर कादिर है, जब वती पर कादिर है तो गोया हकीकतन वती मौजूद है, तो लिहाजा जुदाई के बाद ही फिर इद्दत का आगाज होगा। इस पर इश्काल हुआ था कि भाई ये इद्दत तो औरत ने गुजारनी है तो मियां बीवी को तो सोहबत का पता है, तो उसका जवाब दिया कि औरों को भी इस हुक्म की जानने की जरूरत पेश आ सकती है, मसलन कोई और शख्स इस औरत से निकाह करना चाहता है तो वो भी मोहताज है कि उसको पता चले कब इसकी इद्दत शुरू हो रही है और कब खत्म होगी भाई। उसके बाद साहिब हिदाया ने अगला मसला जिक्र फरमाया था और मैंने बतलाया था कि उस मसले की बुनियाद इस जाब्ते पर है कि एक निकाह के अंदर अगर खावन सोहबत कर ले तो क्या वो दूसरे निकाह के अंदर भी सोहबत शुमार की जाएगी या शुमार नहीं की जाएगी। तो शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पहले निकाह की सोहबत वो दूसरे निकाह के अंदर भी सोहबत शुमार की जाएगी, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, पहले निकाह की सोहबत दूसरे निकाह की सोहबत शुमार नहीं की जाएगी भाई। चुनांचे सूरत यह है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक़े बाइन दे दी और तलाक़े बाइन की वजह से निकाह टूट गया, अब खावंद रुजू नहीं कर सकता तो खावंद दोबारा इस औरत के साथ नया निकाह करता है इद्दत के दौरान नए महर के साथ। अब खावंद ने निकाह कर लिया और फिर दोबारा बगैर सोहबत के ही औरत को तलाक दे दी, तो इस सूरत में शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पहले निकाह के अंदर तो खावंद सोहबत कर चुका था और उसका असर अभी तक चल रहा था, उसका असर अभी तक चल रहा था और पहले निकाह में जब खावंद ने सोहबत की तो मालूम हुआ औरत उसके कब्जे में है, औरत पर उसका कब्जा है और अब इस वक्त यह औरत इद्दत में चल रही है, उसी कब्जे का असर अभी तक चल रहा है। बात समझ में आ गई, तो यूं कहो उसी कब्जे का असर चल रहा है या यूं कहो उसी वती का असर चल रहा है अभी तक, और फिर खावंद ने इसी दौरान दूसरा निकाह कर लिया, तो वही कब्जा इस दूसरे निकाह के कब्जे के भी कायम मकाम हो जाएगा, या यूं कहो वही वती इस निकाह की वती के भी कायम मकाम हो जाएगी। तो गोया इस निकाह के अंदर भी वती पाई गई, जब वती पाई गई तो अब खावन को पूरा महर देना पड़ेगा और नीस औरत पर नई मुस्तकिल इद्दत आएगी भाई। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, दूसरे निकाह के अंदर खावन ने बगैर सोहबत के तलाक दी है, लिहाजा यहां अब निस्फ महर देना पड़ेगा, पूरा महर नहीं, और नीज इस औरत पर नई इद्दत भी नहीं आएगी, अलबत्ता उसी पहली इद्दत को वो पूरा कर लेगी और उस पर कोई नई मुस्तकिल इद्दत नहीं है। इसलिए क्योंकि जब दूसरा निकाह कर लिया खावन ने तो पहली तलाक का हुक्म यानी उसकी इद्दत का हुक्म थोड़ी देर के लिए छुप गया, इहतमाल था कि खावन सोहबत कर लेगा तो वो पहली इद्दत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन खावन ने तो सोहबत नहीं की, बगैर सोहबत के तलाक दे दी तो उसका असर तलाक के बाद फिर जाहिर हो गया, तो औरत उसी पहली इद्दत को पूरा कर लेगी और उस पर कोई नई मुस्तकिल इद्दत नहीं है। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स अपनी उम्मे वलद को खरीदे और फिर उसको आजाद कर दे। एक शख्स ने एक बांदी से निकाह किया हुआ है और इस बांदी से इसकी औलाद भी है, फिर इस खावंद ने अपनी इस बीवी को उसके आका से खरीद लिया, तो खरीदते ही निकाह खत्म हो गया, अब ये इसकी ममलूका है। निकाह टूटने की वजह से बांदी पर दो हैज की इद्दत आई, लेकिन इस आका ये जो पहले खावंद था इस खावंद के हक में वो इद्दत जाहिर नहीं है भाई, क्योंकि पहले भी ये बांदी इसके लिए हलाल थी निकाह की वजह से और अब भी हलाल होगी मिलके यमीन की वजह से, लेकिन फिर उसने इसको आजाद कर दिया और ये तो इसकी उम्मे वलद है क्योंकि इससे इसकी औलाद हो चुकी है, तो लिहाजा इस बांदी पर अब उम्मे वलद वाली इद्दत भी आएगी और ये जो इद्दत थी बांदी की अब ये भी जाहिर हो जाएगी। पहले खावंद के हक में जाहिर नहीं थी लेकिन अब यह इद्दत भी जाहिर हो जाएगी और फिर दोनों इद्दतों में तदाखुल होगा, तो यह औरत तीन हैज गुजारेगी और यह शख्स अब अगर इसे निकाह करना चाहता है तो अब तीन हैज इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे देखो यहां पर यह जो बांदी है इसको खावंद ने जब खरीदा तो दो हैजों की इद्दत आई लेकिन खावंद के हक में वो जाहिर नहीं थी और आजाद जब कर दिया तो अब खावंद के हक में भी जाहिर हो गई। तो इसी तरह यहां पर भी जब खावंद ने दूसरा निकाह किया तो पहली तलाक का हुक्म यानी इद्दत जाहिर नहीं थी, वो पोशीदा हो गई और फिर जब खावंद ने तलाक दे दी तो अब वो इद्दत जाहिर हो गई, अब औरत को वो इद्दत गुजारना पड़ेगी। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर जिम्मी ने जिम्मिया को तलाक दे दी तो इस जिम्मिया पर कोई इद्दत नहीं इमाम साहिब के नजदीक, क्योंकि कुफार जो हैं अहकाम शरीयत के मुकल्लफ नहीं है भाई, और जबकि साहिबैन फरमाते नहीं इख्तिलाफी मसाइल तो इन पर लाजिम नहीं लेकिन इजमाई और इतफाकी मसाइल इन पर लाजिम हैं, और बिल इतफाक तमाम फुकहा के नजदीक तलाक के बाद औरत पर इद्दत आती है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल मुतल्लकात यतरब्बस नबी अनफुसिहिन्ना सलासत कुरू, तो लिहाजा इस औरत पर भी इद्दत आएगी। हां ये अगर इद्दत के अंदर निकाह करती है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, इनके मामले में दखल नहीं देंगे क्योंकि हमने इनसे अक़्दे जिम्मा किया हुआ है। तो इमाम साहब के नजदीक ये उनके मजहब में ये जायज है और ये इद्दत के अंदर निकाह करती है तो उनके नजदीक ये निकाह ही जायज है, जबकि साहिबैन के नजदीक निकाह जायज नहीं, अलबत्ता हम दखल नहीं देंगे भाई। और अगर कोई औरत मुसलमान होकर दारुल हर्ब आ गई तो तबायुन दार पाया गया हकीकतन भी और हुक्मन भी, तो इमाम साहब के नजदीक इस पर कोई इद्दत नहीं है, ये फौरन ही निकाह कर सकती है। वजह यह कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ला जुनाह अलैकुम अन तनकिहुहुन्ना, कि ये हिजरत करके आने वाली औरतें जो हैं इनके साथ तुम निकाह करो तो तुम पर कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं है भाई। और नीज इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो औरत पर इद्दत वाजिब होती है ये खावंद के हक के तौर पर होती है और ये तो हरबी की बीवी है और हरबी का तो कोई हक नहीं है, उसको तो बेजान चीजों वाला हुक्म दिया गया है, हत्ता कि उसको वो ममलूक हो जाता है और उसको बेचा जाता है खरीदा जाता है, लिहाजा इस औरत पर खावंद के हक के तौर पर कोई इद्दत वाजिब नहीं की जा सकती। हां अलबत्ता अगर इसके पेट में बच्चा है यह हामिला है तो फिर यह बच्चा साबित ثَابِتٌ نصب ہے، لہذا اس صورت میں اس کا نکاح جائز نہیں جب تک یہ اپنے حمل کو جنم نہ دے دے۔ جبکہ امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ حاملہ ہو تو تب بھی اسے نکاح جائز ہے، لیکن خاوند کے لیے اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہے، اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں وہ جو حاملہ ہے زنا کی وجہ سے، جو عورت زنا کی وجہ سے حاملہ ہے اس کا حمل ثابت النسب نہیں، تو لہذا وہاں نکاح جائز ہے، البتہ اس کے ساتھ بھی خاوند صحبت نہ کرے جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے دے، اس لیے کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرنے سے۔ لیکن صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، وجہ یہ کہ جو حاملہ ہوتی ہے زنا کی وجہ سے اس کا حمل تو ثابت النسب نہیں ہے، اس لیے وہاں نکاح کی اجازت ہے، لیکن یہ جو حاملہ ہے اس کا حمل تو ثابت النسب ہے بھائی، تو فرماتے ہیں یہ قول بھی صحیح ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ اگر مہاجرہ جو ہے وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک نکاح بھی جائز نہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی، اب آئیے آج کے سبق پر۔ فصل، قال وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة الحداد۔ اب بھائی اس فصل کے اندر صاحب ہدایہ بیان فرمائیں گے کہ معتدہ کے لیے کون سی چیزیں ممنوع ہیں اور کون سی چیزیں اس کے لیے جائز ہیں۔ بھائی یاد رکھو عدت کے اندر تین پابندیاں ہوتی ہیں عورت پر، ایک تو وہ نکاح نہیں کر سکتی، تزوج کی پابندی ہے، دوسرا خروج کی پابندی ہے، وہ گھر سے نہیں نکل سکتی، اس کا گھر سے نکلنا حرام ہے بھائی، اور تیسری پابندی اس پر یہ ہے کہ وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، یہ وہ سوگ منائے گی، اظہار غم کرے گی، کیونکہ وہ نعمت نکاح سے محروم ہو گئی ہے، چاہے خاوند کا انتقال ہوا ہے چاہے خاوند نے طلاقیں بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں، تو لہذا وہ سوگ منائے گی، اظہار غم کرے گی کہ اس سے نعمت نکاح جو ہے وہ چھن گئی ہے، بھائی وہ نعمت نکاح سے محروم ہو گئی ہے۔ ہاں البتہ اگر مطلقہ رجعیہ ہے تو وہاں اس پر سوگ نہیں ہے، البتہ اس پر بھی پابندی ہے، وہ بھی عدت کے اندر آگے نکاح نہیں کر سکتی، اور نیز اس پر بھی پابندی ہے، اس کا بھی گھر سے نکلنا حرام ہے، البتہ تزین کی پابندی اس پر نہیں ہے، وہ زیب و زینت کو اختیار کر سکتی ہے تاکہ خاوند کی اس کی طرف رغبت ہو اور وہ رجوع کر لے۔ بھائی اسی طرح اگر عدت گزارنے والی نابالغہ ہے صغیرہ ہے، تو یاد رکھو اس پر بھی پابندیاں ہیں، اس کا بھی آگے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور نیز اس کا بھی گھر سے نکلنا حرام ہے، لیکن البتہ اس پر تزین کی پابندی نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے بھائی، فصل، قال وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة الحداد۔ یاد رکھو حداد، بھائی حداد حد یا حدو کا معنی ہے سوگ منانا، سوگ منانا اس کو حداد کہتے ہیں، یہ باب زرابا سے ہے، حد یا حد حدادن، اور اسی طرح صاحب ہدایہ آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ یہ باب افعال سے بھی آتا ہے، احد یحد احدادن، تو حداد کہہ لیں یا احداد کہہ لیں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ بھائی قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وعلی المبتوتتی، اور وہ عورت جو مبتوتا ہے یعنی جس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، والمتوفا عنہا زوجہا، اور اسی طرح وہ عورت کہ جس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے، اذا کانت بالغتم مسلمتن، جب یہ عورت بالغہ ہے اور مسلمان ہے، دیکھو بالغہ کی قید لگائی، نہ بالغہ پر حداد نہیں ہے یعنی سوگ اور اظہار غم نہیں ہے بھائی، تو کہتے ہیں اذا کانت بالغتم مسلمتن، جب یہ بالغہ ہو مسلمان ہو تو اس پر واجب ہے الحداد، حداد کا کیا معنی؟ سوگ منانا، اظہار غم کرنا، तो कहते हैं अम्मल मुतवफा अन हा ज़ौजुहा, तो वो औरत जिसके खावन का इंतकाल हो गया है, फली कौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु, तो उस पर शोक जो है वो हुजूर अलैहि सलाम के इस कौल की वजह से है, ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी अन तहिद्द अला मैतिन फौका सलासति अय्यामिन इल्ला अला ज़ौजिहा अरबात अशहुरिन व अशरा। यह हदीस है भाई, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं ला यहिल्लु लिमरातिन, कि हलाल नहीं है किसी औरत के लिए, तो मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो ईमान रखती है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, तो ऐसी किसी औरत के लिए यह हलाल नहीं है, अंत अला मैतिन, कि वो सोग मनाए किसी मरने वाले पर, फौक सलासती अयामिन, तीन दिन से ज्यादा। अपने किसी अजीज के मरने पर अगर औरत इजहार गम करना चाहती है तो ज्यादा से ज्यादा तीन दिन तक वो जेबो जीनत को तर्क कर सकती है, और उसमें भी याद रखें अगर खावंद मना करे तो फिर उसमें भी जेबो जीनत को तर्क करना इसके लिए जायज नहीं, अगर खावंद मना करे तो फिर यह भी उसके लिए जायज नहीं है। तो हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, कि जो औरत अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती है उसके लिए हलाल नहीं है, अंतहिद अला मैतिन फौक सलासति अय्यामिन, कि वो सोग मनाए किसी मरने वाले पर तीन दिन से ज्यादा, इल्ला अला ज़ौजिहा, मगर अपने खावंद पर, अरबात अशहुरिन व अशरा, चार महीने और दस दिन तक, अपने खावंद पर चार महीने दस दिन तक इसका सोग मनाना वाजिब है भाई। वह अमल मबतूत तूफा मजहब ना, और बाकी जो मबतूता है तो ये हमारा मजहब है, मतन में बतलाया भाई, मबतूता वो औरत जिसका निकाह टूट गया है, यानी खावन ने तलाके बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, ये जो औरत है ये भी सोग मनाएगी। साहिब हिदायत फरमा रहे ये हमारा मजहब है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये औरत सोग नहीं मनाएगी। वजह यह कि वो फरमाते हैं कि ये जो औरत सोग मनाती है खावंद के इंतकाल पर, वो इजहार गम करती है, अफसोस का इजहार करती है कि मेरा वो खावंद फौत हो गया जिसने मरते दम तक निकाह को निभाया, जिसने मरते दम तक मेरे निकाह को निभाया और मेरे निकाह की पासदारी की, तो अब उसके इंतकाल पर तो औरत सोग मनाएगी, लेकिन ये खावंद जिसने इसको तलाकें बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, यहां औरत सोग नहीं मनाएगी। वजह यह कि खावंद ने इसको जुदा करके इसको वहशत में मुबतला किया है, तकलीफ परेशानी में मुबतला किया है, तो लिहाजा इस जैसे खावंद के फौत होने पर क्या अफसोस करना। तो कहते हैं वह अमल मबतूता तो फमजहबुना, और बाकी मबतूता पर जो सोग है फमजहबुना, तो ये हमारा मजहब है। वकाल शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं ला हिदाद अलैहा, कि मबतूता पर हिदाद नहीं है, इस पर सोग मनाना नहीं है, लिअन्नहु वजब इजहारन लितअस्सुफ अला फौति ज़ौजिन वफ़ा बिअहदिहा इला ममातिही। तर्जमा समझने भाई, लिअन्नहु वजबा, इसलिए क्योंकि ये सोग जो वाजिब हुआ है, इजहार अन लितअस्सुफी, ये अफसोस का इजहार करने के लिए है, अला फौती ज़ौजिन, एक ऐसे खावंद के फौत हो जाने पर, वफा, जिसने पूरा किया, बिअहदिहा, इस औरत के निकाह को जिसने पूरा किया, जिसने निभाया, बिअहदिहा, इस औरत के निकाह को। अहद से क्या मुराद है? निकाह, यानी निकाह भी तो मियां बीवी में एक मुआहिदा है ना, तो ये अफसोस है अला फौती ज़ौजिन, ऐसे खावन के फौत हो जाने पर, वफा बिआहदिहा, जिसने इस औरत के मुआहिदा निकाह को निभाया, उसको पूरा किया, इला ममाती ही, अपनी मौत तक, तो लिहाजा उस पर यह इजहार गम किया जाता है। फिर एक दफा तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिअन्नहु वजब इजहार अन लितअस्सुफी, इसलिए क्योंकि जो सोग औरत पर वाजिब होता है यह अफसोस का इजहार करने के लिए है, अला फौती ज़ौजिन, एक ऐसे खावंद के फौत हो जाने पर, वफा बिअहदिहा, जिसने इस औरत के निकाह को निभाया, इला ममाती ही, अपनी मौत तक, वकद औहशहा बिल इबानती, और ये जो खावंद जिसने इसको तलाकें बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, तो कहते हैं वकद औहशहा बिल इबानती, इसने तो इस औरत को वहशत में मुबतला कर दिया है, यानी खौफ घबराहट और परेशानी में मुबतला कर दिया है, बिल इबानती, इसको जुदा करके जी। फला तअस्सुफा बिफौतिही, लिहाजा इस तरह के खावंद के फौत हो जाने पर यानी उसके छूट जाने पर इस पर कोई अफसोस नहीं हो सकता भाई। तो कहते हैं फला तअस्सुफा बिफौतिही, लिहाजा इस किस्म के खावंद के छूट जाने पर कोई अफसोस नहीं होगा। वलना, और हमारी दलील जो है मारूविया वो हदीस है जो रिवायत की गई है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहल मुअतदता अन तख्तज़िब बिल हिन्ना। हिन्ना भाई याद रखो ये मेहंदी को कहते हैं, उर्दू में तो नून की तख़फीफ के साथ है हिना हिना कहते हैं, लेकिन असल में अरबी में ये लफ्ज़ नून की तशदीद के साथ है हिन्ना भाई। और तख्तज़िब इख्तज़ब इख्तज़िब के माने होते हैं रंगीन होना, क्या होना रंगीन होना, खिजाब वाला होना, और इसके साथ बा आ गई तो अब इसका माना है रंगीन करना, खिजाब करना, यह मुतादी हो गया बा के जरिए। कहते हैं वलाना, और हमारी दलील जो है मारूविया वो हदीस है जिसको रिवायत किया गया है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहल मुअतदता, कि हुजूर अलैहि सलाम ने इद्दत गुजारने वाली को मना फरमाया अन तख्तज़िब बिल हिन्नाई, कि वो मेहंदी से खिजाब करे, कि वो मेहंदी से रंग करे, अन तख्तज़िब बिल हिन्नाई मेहंदी से खिजाब करना या मेहंदी से रंगदार करना, इससे मना फरमाया। तो अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहल मुअतदता, हुजूर अलैहि सलाम ने इद्दत गुजारने वाली औरत को मना फरमाया अन तख्तज़िब बिल हिन्नाई, कि वो खिजाब करे मेहंदी के साथ। वकाला, और फरमाया अल हिन्ना उतीबुन, के मेहंदी जो है वो खुशबू है, मेहंदी की खुशबू होती है भाई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इद्दत वाली को मेहंदी के इस्तेमाल से मना फरमाया। और इस हदीस के अंदर मुतलकन मुअतद्दा का जिक्र है, इसमें कोई फर्क नहीं किया गया कि वो मुअतद्दतुल वफात है या मुअतद्दतुत तलाक है भाई। तो लिहाजा दोनों का यही हुक्म होगा। वली अन्नहु, अब दूसरी अकली दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वली अन्नहु यजिबु इजहारन लितअस्सुफी अला फौति निअमतिन निकाहिल्लज़ी हुवा सबबुन लिसौनिहा व किफायति मुअनिहा। कहते हैं वली अन्नहु यजिबु, और इसलिए क्योंकि ये जो सोग है ये वाजिब है औरत पर, इजहारन लितअस्सुफी अफसोस का इजहार करने के लिए, अला फौति नियमतिन निकाही उस नियमत निकाह के फौत हो जाने पर, अफसोस का इजहार करना उस नियमत निकाह के फौत हो जाने पर, अल्लदी हुआ सबबुन लिसौनिहा वो निकाह जो इस औरत की हिफाजत का सबब था, सौन स्वाद के साथ, सौना यसूनु सौनन का माना हिफाजत। तो कहते हैं वो निकाह अल्लदी हुआ सबबुन लिसौनिहा जो इस औरत की हिफाजत का सबब था जी। इस औरत की हिफाजत का सबब था यानी गैरों से भी इसकी हिफाजत थी और नीज हराम से भी औरत की हिफाजत थी भाई। वह किफायती मुअनिहा, मुअन जो है जमा है मुअनतुन की, और मुअनतुन कहते हैं मशक्कत को। वह किफायती मुअनिहा, और वो खावन जो सबब था इस औरत की मशक्कतों की किफायत का, यानी यूं कहो वो इस औरत की जरूरियात पूरा करने का सबब था। नफका देना भी उसके जिम्मे था, कपड़े देना भी उसके जिम्मे था, रिहाइश देना भी इसके जिम्मे था, तो औरत की सारी जरूरतों की वो किफायत कर रहा था। तो ये नेमत निकाह जिसकी वजह से औरत की हिफाजत भी थी और उसकी तमाम जरूरियात की किफायत भी हो रही थी, वो नियामत निकाह औरत से छूट गई है, वो नियामत निकाह फौत हो गई है, तो इस पर इजहार गम करने के लिए औरत पर इद्दत वाजिब हुई है। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए। वली अन्नहु यजिबु, और इसलिए क्योंकि ये सोग जो है औरत पर वाजिब है, ये इजहार गम औरत पर वाजिब है, इजहार अन लिता अस्सुफी अफसोस का इजहार करने के लिए, अला फौती नियामत निकाही उस नियामत निकाह के फौत हो जाने पर, अल्लदी हुआ सबबुन वो नियामत निकाह जो सबब था, लिसौनिहा इस औरत की हिफाजत का, यानी दूसरों से भी हिफाजत थी और हराम से भी हिफाजत थी। वह किफायती मुअनिहा, और वो निकाह जो सबब था इस औरत की मशक्कतों की किफायत का, कि औरत की सारी मशक्कतें यानी सारी जरूरियात जो हैं उनकी किफायत हो रही थी, तो इस नियामत निकाह के फौत हो जाने पर بطور افسوس کے سوگ یعنی اظہار غم عورت پر واجب ہوگا. والابانت اقطع لها من الموت. امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ خاوند کے انتقال پر تو اظہار غم ہوگا لیکن طلاق بائن یا تین طلاقیں دینے پر اظہار غم نہیں ہوگا. تو جواب دے رہے ہیں, کہتے ہیں والابانت اقطع لها من الموت, اور یہ جو خاوند کا جدا کرنا ہے یہ تو موت سے بھی بڑھ کر اس نعمت کو کاٹنے والا ہے. یہ تو موت سے بھی بڑھ کر اس نعمت نکاح کو کاٹنے والا ہے. چنانچہ فقہا فرماتے ہیں اگر خاوند کا انتقال ہو جائے اور آپ جانتے ہیں کہ موت کی وجہ سے نکاح اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے, یعنی نکاح ختم ہوا اپنے اختتام تک پہنچ گیا, لیکن یہ عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے. حالانکہ نکاح اختتام کو پہنچ گیا ہے لیکن پھر بھی یہ عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے. جبکہ وہ عورت جس کو خاوند نے طلاق بائن یا تین طلاقیں دے دی ہیں اگر اس کے خاوند کا انتقال ہو جائے عدت کے اندر تو وہ خاوند کو غسل نہیں دے سکتی. بھائی تو معلوم ہوا اس نعمت نکاح کو موت سے بھی بڑھ کر اس طلاق بائن یا تین طلاقوں نے توڑا ہے. لہذا جب موت کے اندر اظہار غم ہوگا تو اس طلاق بائن یا تین طلاقوں میں بطریق اولا اظہار غم ہوگا. دلیل سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں والابانت اقطع لها من الموت, اور یہ خاوند کا اس کو جدا کرنا یہ اس نعمت نکاح کو زیادہ کاٹنے والا ہے. من الموت موت کے مقابلے میں. حتی کان لها ان تغسله میتا, یہاں تک کہ اس عورت کے لیے جائز ہے کہ یہ غسل دے دے اپنے مردہ خاوند کو. قبل الابانت جدائی سے پہلے, لا بعدها جدائی کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے. بھائی ترجمہ سمجھ میں آ گیا. آگے دیکھیے کہتے ہیں والحداد ویقال الاحداد وهما لغتان. کہتے ہیں اور حداد جو ہے اور ویقال الاحداد اور اسی طرح احداد بھی کہتے ہیں. وهما لغتان یہ دو لغتیں ہیں بھائی. اور وہ یہ ہے, اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ سوگ کیسے منائے گی عورت, کیا کیا چیزیں ترک کرے گی. تو بتائیں گے کہ زیب و زینت والی چیزیں اور خوشبو سے اپنے آپ کو عورت دور رکھے گی. کہتے ہیں حداد جو ہے وہ یہ ہے, انتت رک الطیب والزینت والکحل والدہن المطیب وغیر المطیب الا من عذر وفی الجامع الصغیر الا من وجع. تو کہتے ہیں حداد یہ ہے, انتت رک الطیب کہ یہ عورت خوشبو کو ترک کر دے گی, والزینت اور زینت کو بھی ترک کر دے گی, والکحل اور سرمے کو بھی ترک کر دے گی, والدہن المطیب دہن کہتے ہیں تیل کو, متیب خوشبودار, ودہن المطیب وغیر المطیبی اور خوشبودار تیل ہو یا غیر خوشبودار تیل ان کو بھی ترک کر دے گی, الا من عذر مگر کسی عذر کی وجہ سے. یہاں تک عبارت ہے قدوری کی. صاحب قدوری نے بتلایا کہ حداد یہ ہے کہ عورت خوشبو کو, زینت کو, سرمے کو اور تیل چاہے خوشبودار ہو چاہے غیر خوشبودار ان کو ترک کر دے گی, الا من عذرین مگر عذر کی وجہ سے. عذر کی وجہ سے ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے بھائی. تو اس عذر سے وضاحت نہیں ہو رہی تھی کہ عذر سے کیا مراد ہے. تو صاحب ہدایہ اب ساتھ جامع صغیر کی بھی عبارت نقل کریں گے. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وفی الجامع الصغیر الا من وجع, کہ جامع صغیر میں ہے الا من وجع مگر وجع کہتے ہیں دکھ اور تکلیف کو. الا من وجع یہ جیم پر فتحہ ہے بھائی, مگر کسی درد وغیرہ اور تکلیف کی وجہ سے, درد وغیرہ یا تکلیف کی وجہ سے. دیکھو اب اس کے ذریعے عذر کی طرف اشارہ ہو گیا. معلوم ہو کوئی بیماری ہو اس کے علاج کے طور پر یہ چیزیں استعمال کر سکتی ہے, زینت کے لیے استعمال نہیں کر سکتی. تو کہتے ہیں الا من وجع مگر درد کی وجہ سے. والمعنی فیہ وجہانی, معنی کا میں نے بتلایا تھا کہ فقہ کی کتابوں میں معنی کا لفظ علت اور سبب کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی اب یہ معنی جو ہے علت کے معنی میں ہے. کہتے ہیں والمعنی فیہ وجہانی, یہ جو زینت اور خوشبو کو ترک کیا جا رہا ہے اس کے اندر علت جو ہے وہ دو وجہیں ہیں بھائی, दो वजह से, बात समझ में आ गई, ये माना है। वल माना फी ही वजहानी, और इसके अंदर इल्लत जो है यानी सबब जो है दो वजहें हैं। अहदुहुमा, एक वो वजह, मा जकर ना हो, वो जो हमने जिक्र कर दी, मिन इजहार तअसुफी, यानी कि अफसोस का इजहार कि नियामत निकाह खत्म हुई है तो अफसोस का इजहार होगा। वसानी, और दूसरी वजह यह है कि अनहादिहिल अशिया अदवा रगबती फीहा, कि ये वाली जो चीजें हैं, ये खुशबू और जीनत और सुरमा और तेल वगैरह और ये चीजें, कि अन हादिहिल अशिया, ये चीजें जो हैं, दवाई रगबती फीहा, ये औरत के अंदर रगबत की दवाई हैं, इनकी वजह से मर्दों की औरत में रगबत बढ़ती है। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुतजयन और मुततयब औरत जो है उसमें मर्दों की रगबत ज्यादा होगी। भाई कहते हैं वसानी, और दूसरी वजह यह है कि नहादिहिल अशिया अदवा रगबती फीहा, कि ये जो चीजें हैं ये औरत के अंदर रगबत की दवाई हैं, ये औरत के अंदर रगबत के दवाई हैं, यानी उसमें रगबत को बढ़ाने वाले हैं। वही है ममनूअतुन अनिन निकाही, और हाल यह है कि इस औरत को तो निकाह से रोका गया है। फता जता नीबूहा, तो लिहाजा इसलिए यह औरत इन चीजों से बचेगी। कैला तसीर जरीअतन, ताकि कहीं ये सबब न बन जाए इलल वुकूइफिल मुहर्रमी, हराम के अंदर वाके होने का, ताकि कहीं ये चीजें हराम के अंदर वाके होने का सबब न बन जाए, लिहाजा इसलिए इनसे औरत इज्तिनाब करेगी। वकद सहा, और तहकीक ये बात सही तौर पर साबित है कि अन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलामु लम यज़न लिल मुअतद्दति फिल इक्तिहाली, इक्तिहाल का माना है सुरमा लगाना। कहते हैं वकद सहा, और यह बात सही तौर पर साबित है कि अन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलामु के हुजूर अलैहि सलाम ने लम यज़न लिल मुअतद्दति, के हुजूर अलैहि सलाम ने इद्दत गुजारने वाली औरत को इजाजत नहीं दी। फिल इक्तिहाल, सुरमा लगाने में, सुरमा लगाने की भी इजाजत नहीं दी। वह दोहनु ला यारा, अरिया यारा का माना खाली होना। वह दोहनु ला यारा अन नौइ तीबिन, और तेल जो है वो भी खाली नहीं होता एक किस्म की खुशबू से। बाज तेल हैं जो हैं उनकी तो बहुत ज्यादा खुशबू होती है, और जो बगैर खुशबू के हों उनकी भी कुछ ना कुछ महक जरूर होती है। तो कहते हैं वद्दुहनुल्ला यारा अन नौतीबिन, और तेल जो है वो भी एक किस्म की खुशबू से खाली नहीं। वफी ही जीनतु शारी, और नीज तेल के अंदर बालों की जीनत भी है। वली हादा, और इसी वजह से यमनाउल मुहरिमु अनहु, मुहरिम को इनसे मना किया जाता है, मुहरिम को तेल लगाने से मना किया जाता है। काल इल्ला मिन उजरीन, मतन में साहिब कुदूरी ने क्या फरमाया था कि अंततरुकत तीब व जीनत अवल कोहल व दोहनल मुतैयब वगैर अल मुतैयबी इल्ला मिन उजरीन, तो इल्ला मिन उजरीन फरमाया था। अब उसको बयान कर रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं काल इल्ला मिन उजरीन, साहिब कुदूरी ने इल्ला मिन उजरीन फरमाया, लिअन नफी ही जरूरतन, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जरूरत है, उजर के अंदर जरूरत होती है, और जरूरत की वजह से आप जानते हैं अज़रूरतु तुबीहुल महजूरात, जरूरत ममनू चीजों को भी जायज कर देती है। भाई तो कहते हैं वल मुरादु दवा उल जीनतु, और मुराद इससे दवा है जीनत नहीं, किसी उजर की वजह से लगाए तो इसे मुराद बतौर दवा के है, बतौर जीनत के नहीं। मसलन एक औरत जो है वो इद्दत गुजार रही है, अब उसके कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं तो अब वो जीनत इख्तियार करती है कि भाई मुझे जरूरत है जी। नहीं भाई, जरूरत से ये जरूरत नहीं मुराद के जीनत के लिए आप लगाएं, जरूरत से मुराद है कोई तकलीफ वगैरह है, बीमारी वगैरह है, तो वो उजर है, तो बतौर दवा के लगा सकती है, बतौर जीनत के नहीं लगा सकती। तो ये माना है वल मुराद उद्दवा उल जीनत, और मुराद दवा है जीनत नहीं। इसी तरह फुकहा फरमाते हैं अगर आंखों की तकलीफ है और औरत को जरूरत पेश आ गई सुरमा लगाने की और ये इद्दत गुजार रही है तो इसको इजाजत नहीं है। हां बहुत तकलीफ हो गई है तो फिर रात को लगा ले और सुबह उठते ही उसको साफ कर ले। भाई वलवी अतादति दोहना फखाफत वजान, सूरत मसला ये, एक औरत है उसको तेल लगाने की आदत है। भाई एक औरत है उसको तेल लगाने की आदत है और वो तेल नहीं लगाती तो उसको सर में दर्द शुरू हो जाती है, यानी इतनी आदत हो चुकी है उसको तेल लगाने की। तो कहते हैं अगर ये बात जाहिर हो कि तेल नहीं लगाएगी तो सर में दर्द होगा तो फिर इस औरत के लिए गुंजाइश है, ये तेल लगा सकती है। अब देखो अभी तकलीफ आई नहीं, लेकिन उसका आना गालिब है, और गालिब को भी याद रखो ऐसे ही शुमार किया जाता है जैसे वाकया हो चुका है, जैसे आ चुकी है। तो जैसे तकलीफ आने के बाद तेल लगाने की इजाजत है, तो इस औरत जिसके अंदर तकलीफ का आना गालिब है इसके लिए भी तेल लगाने की इजाजत होगी। तो कहते हैं वलवी अतादति दोहना, और अगर एक औरत को तेल लगाने की आदत है, फखाफत वजअन, तो इसको दर्द का खौफ है, फइन काना जालिका अमरन जाहिरन, तो अगर ये दर्द का खौफ खूब जाहिर है, यानी ये बात जाहिर है कि दर्द होगा, तो युबाहु लहा, तो उस औरत के लिए तेल लगाना मुबाह होगा, लेकिन बगैर खुशबू वाला हो भाई। लिअन्न अल-ग़ालिब कल-वाक़िअ, इसलिए क्योंकि गालिब चीज भी इसी तरह होती है जैसे वाक़े हो चुकी है, गोया दर्द आ चुका है, तो अब तेल लगाने की इजाजत होगी। वकदा लुबसुल हरीरी, और इसी तरह रेशम का पहनना, इदह ताजत इलैही, जब औरत को इसकी हाजत पेश आ जाए, ले उजरिन, किसी उजर की वजह से, तो ला बासा बिही, उसमें भी कोई हरज नहीं। यह औरत जेबो जीनत को इख्तियार नहीं कर सकती, लेकिन किसी उजर की वजह से अगर इसको रेशमी कपड़े पहनने पड़े, मसलन जिसम पर दाने निकल आए हैं या जिसम पर खारिश हो गई है और अब रेशमी कपड़े पहनेगी, तो फिर यह जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर दूसरे कपड़े पहनेगी तो यह तकलीफ जल्दी ठीक नहीं होगी, तो फिर यह उजर है, लिहाजा ये रेशमी कपड़े फिर पहन सकती है भाई। आगे देखिए, वला तख्तजिबु बिल हिन्नाई, और औरत जो है मेहंदी के साथ हिजाब नहीं करेगी, लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी कि हुजूर ने क्या फरमाया, अल हिन्ना उतीबुन, के मेहंदी खुशबू है। वला तलबिसु सौबम मसबूगम बिउस्फुरिन वला बिज़ाफरानिन, और औरत नहीं पहन सकती ऐसा कपड़ा मसबूगन जिसको रंगा गया हो, बिउस्फुरिन, उस्फुर बूटी के साथ, उस्फुर कोई पौधा है जिसके साथ चीजों को रंग दिया जाता है, वला बिज़ाफरानिन, ज़ाफरान भी इसी तरह याद रखो पौधे का जुज है, फूल का जुज है, तो इसका रंग भी होता है और इसकी खुशबू भी होती है। तो कहते हैं वला तलबसु सौबम मसबूगम बिउस्फुरिन वला बिज़ाफरानिन, और औरत नहीं पहन सकती ऐसा कपड़ा जो रंगा गया हो उस्फुर के साथ या ज़ाफरान के साथ, लिअन्नहु यफूहु मिन्हु राइहतुत्तीबी, फाह यफूहु का माना फूटना फैलना, लिअन्नहु यफूहु मिन्हु राइहतुत्तीबी, इसलिए क्योंकि इससे खुशबू फूटती है, खुशबू फैलती है। ज़ाफरान याद रखना ये मुनसरिफ है भाई। आगे देखिए, काला वला हिदाद अला काफिरतिन, अब उन औरतों को बयान कर रहे हैं साहिब हिदाया जिन पर सोग नहीं है, हिदाद नहीं है। कहते हैं काला वला हिदाद अला काफिरतिन, साहिब कुदूरी फरमाते हैं काफिरा औरत पर हिदाद नहीं, लिअन्नहा गैरु मुखातबतिन बिहुकूकि शरई, क्योंकि ये हुकूकि शरा की मुखातबा नहीं है, ये शरी अहकाम इस पर लागू नहीं है। वला अला सगीरतिन, और इसी तरह सगीरा जो नाबालिगा है भाई उस पर भी हिदाद नहीं है, लिअन्न अल-खिताब मौज़ूउन अन्हा, इसलिए क्योंकि खिताब इससे उठा लिया गया है, ये मुकल्लफ नहीं है भाई, मुकल्लफ नहीं है, खिताब इसकी तरफ भी मुतवज्जो नहीं। वअलल अमतिल इहदादु, हां बांदी पर इहदाद है, बांदी इजहार गम करेगी, अगर उसको खावन ने तलाके बाइन दी है या खावन का इंतकाल हुआ है ये इजहार गम करेगी। तो कहते हैं वालल अमतिल इहदादु, और बांदी पर इहदाद है, लिअन्नहा मुखातबतुम बिहुकूकिल्लाहि तआला, इसलिए क्योंकि ये भी अल्लाह के हुकूक के साथ मुखातबा है, फी मालई सफी इब्तालु हक्किल मौला, उन चीजों के अंदर जिनमें आका का हक बातिल न होता हो, वो चीजें जो आका के हक को बातिल नहीं करती उनके साथ ये भी मुखातबा है, लिहाजा ये जेबो जीनत को तो तर्क करेगी, अलबत्ता घर से निकलना इसके लिए मना नहीं, वैसे तो इद्दत के अंदर घर से भी निकलना मना होता है, लेकिन बांदी के लिए घर से निकलना मना नहीं होगा। वजह यह कि इस सूरत में आका तकलीफ में पड़ जाएगा, क्योंकि उसने तो इसको कामकाज के लिए रखा हुआ है और यह घर से बाहर नहीं जा सकती, तो घर के बाहर सारे काम आका को करने पड़ेंगे, तो लिहाजा वहां चूंकि हाजत है, आका का हक बातिल हो रहा है, तो लिहाजा वहां घर से बाहर निकलने की पाबंदी बांदी पर नहीं होगी। भाई तो कहते हैं लिअन्नहा मुखातबतुम बिहुकूकिल्लाहि तआला फी मा लैस फीहि इब्तालु हक़्किल मौला, इसलिए क्योंकि बांदी भी अल्लाह के हुकूक की मुखातबा है उन चीजों में जिनके अंदर आका का हक बातिल नहीं होता। बिखिलाफिल मनअ मिनल खुरूजी, बखिलाफ बाहर निकलने से मना करने में, लिअन्न फीहि इब्ताल हक़्किही, क्योंकि इसके अंदर तो आका के हक को बातिल करना है। वह हक़ुल अब्द मुक़द्दमुन लिहाजतिही, और बंदे का हक जो है वह अल्लाह के हक पर मुकदम है, लिहाजतिही, बंदे की हाजत की वजह से, क्योंकि बंदा मोहताज है। काला आगे साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वलई सफी इद्दती उम्मिल वलदी वला फी इद्दती निकाहिल फासिदी इहदादुन। भाई उम्मे वलद की इद्दत, उम्मे वलद भाई जिसने बच्चे को जन्म दिया और आका ने कह दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो ये उम्मे वलद हो गई, तो आप इसके आका का इंतकाल हुआ तो आप ये आजाद हो गई, तो क्या यह भी सोग मनाएगी? कहते हैं नहीं, ये जो सोग मनाया जाता है, हमने बताया नेमतें निकाह के खत्म होने पर मनाया जाता है, और इसका तो कोई निकाह नहीं था भाई, ये तो बांदी थी भाई। और इसी तरह निकाह फासिद जो है उसकी इद्दत के अंदर भी एहदाद नहीं होगा। वजह यह कि वो तो शुबाए निकाह था, वहां तो कोई हकीकत में निकाह था ही नहीं भाई, तो लिहाजा वहां भी सोग नहीं होगा। तो कहते हैं वलै सफी इद्दती उम्मिल वलदी वला फी इद्दती निकाहिल फासिदी इहदादुन, और नहीं है उम्मे वलद की इद्दत में और ना ही निकाह फासिद की इद्दत में इहदादुन सोग मनाना। लिअन्नहा मा फातहा नेमतुन निकाही, इसलिए क्योंकि इनमें से किसी की भी नेमत निकाह फौत नहीं हुई। लितुज़हिरा तअस्सुफा, ताकि ये इशारे गम करें, ताकि अफसोस का इजहार करें। वल इबाहतु असलुन, और इबाहत असल है, तमाम चीजों में याद रखो इबाहत असल है, हर चीज में असल यह है कि वो जायज है, मुबाह है, और मना के लिए दलील चाहिए जी। मना के लिए और हराम होने के लिए दलील चाहिए, तो साहिबे हिदाया फरमाते हैं वल इबाहतु असलुन, और इबाहत असल है, यानी यहां जीनत की बात चल रही है, जीनत को इख्तियार करने में इबाहत असल है, यानी जेबो जीनत को इख्तियार करना यह मुबाह है, खास तौर पर औरतों में भाई जी। तो लिहाजा असल इबाहत है, तो लिहाजा ये इनके लिए भी जेबो जीनत जायज होगी। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए। कहते हैं लिअन्नहा मा फातहा नेमतुन निकाही, इसलिए क्योंकि इसकी नेमत निकाह फौत नहीं हुई। लितुज़हिरा तअस्सुफा, कि ये अफसोस का इजहार करे। वल इबाहतु असलुन, और ज़ेबो ज़ीनत में इबाहत असल है, तो लिहाजा यहां कोई मानिया नहीं है, ये ज़ेबो ज़ीनत कर सकती हैं। आगे देखिए वला यम बगी अंतुख्तबल मुअतद्दतु वला बासा बितारीज़ फिल खितबती। मैंने आपको बतलाया था भाई, खताबा यख्तुबु खुतबतन, अगर इसका मस्दर खुतबा आए तो ये इसका माना है तकरीर करना, और इसका मस्दर अगर खितबा आए खा के कसरा के साथ जी। खताबा यख्तुबु खितबतन, तो इसका माना है पैगामे निकाह भेजना। अब सूरत मसला ये, एक औरत इद्दत गुजार रही है, तो क्या इसको पैगामे निकाह भेजा जा सकता है? तो याद रखो इसको पैगामे निकाह भेजना सही नहीं, हां इशारों की नायों में पैगामे निकाह दिया जा सकता है। तो कहते हैं वला यम बगी अंतुख्तबल मुअतद्दतु, और मुनासिब नहीं है अंतुख्तबल मुअतद्दतु के मुअतद्दा को पैगामे निकाह भेजा जाए। वला बास बितारीज फिल खितबती, और कोई हरज नहीं है पैगामे निकाह के अंदर तारीज में। तारीज कहते हैं इशारों की नायों में कोई बात करना, साफ लफ्जों में बात ना करना, बल्कि इशारों की नायों में बात करना। तो कहते हैं वला बासा बितारीजी, और कोई हर्ज नहीं है इशारों की नायों में बात करने में, फिल खितबती पैगाम निकाह में, लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वला जुनाहा अलैकुम, और तुम पर कोई हर्ज नहीं है, यानी तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फीमा और रस तुम बिही मिन खितबती निसाई, फीमा और रस तुम बिही, वो जो तुम तारीज करो इशारों की नायों में बात करो, मिन खितबतिन निसाई, यानी औरतों को पैगाम निकाह देने में
जी।
इशारों की नायों में पैगाम निकाह देने में कोई हरज नहीं है। तो कहते हैं वला जुनाहा अलैकुम फीमा अर्रज़तुम बिही मिन खितबतिन निसाई, और तुम पर कोई हरज नहीं है कि तुम इशारों की नायों में औरतों को पैगाम निकाह दो। इला अन काला, यहां तक कि आगे फिर आयत में अल्लाह फरमाते हैं वला किल्ला तुवाइदुहुन्न सिर्रा, वला किल्ला तुवाइदुहुन्न सिर्रा, मगर ये कि इनसे वादा न करो सिर्रन, पोशीदा तौर पर, तो उनसे पक्का वादा न लो कि वो तुम्हारे साथ ही निकाह करेंगी, किसी और के साथ नहीं भाई। तो कहते हैं वला किल्ला तुवाइदुहुन्न सिर्रा, लेकिन उनसे पोशीदा तौर पर वादा न करो, इल्ला अन तकूलू कौलम मारूफा, मगर ये कि तुम अच्छी बात कहो, यानी कौले मारूफ कहो, जिस तरह हमने कहा कि इशारे से बात कर लो, इशारतन पैगामे निकाह भेज दो, पक्का वादा न लो भाई। आयत के अंदर आया वला किल्ला तुवाइदुहुन्न सिर्रा, सिर्रन का क्या माना, पोशीदा तौर पर, खुफिया तौर पर, वला किल्ला तुवाइदुहुन्न सिर्रा, लेकिन तुम इनसे वादा न करो सिर्रन, पोशीदा तौर पर। अब सिर्रन की कई तफासीर हैं भाई, तो एक माना तो मैंने बतला दिया पोशीदा तौर पर, दूसरा साहिब हिदाया फरमा रहे हैं वकाल अलैहि सलातु वस्सलाम, और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है असिरुन निकाह, के सिर निकाह है, सिर से क्या मुराद है, निकाह। तो यूं माना हुआ वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना निकाहन, उनसे निकाह का वादा न करो, निकाह का वादा न करो भाई। तो कहते हैं वकाल अलैहि सलातु वस्सलाम सिर्रुन निकाह, के हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि सिर जो है निकाह है। वकाल इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं अत तारीज, के तारीज यह है भाई, आयत में आया था फीमा अर्रस तुम बिही, यानी इशारों की नायों में बात कर सकते हो, तो अब तारीज किसे कहेंगे, तो रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं अत तारीज, तारीज यह है अन यकूला, कि वो शख्स यूं कहे इन्नी उरीदु अन अतज़व्वजा, कि मेरा निकाह का इरादा है, मेरा निकाह का इरादा है। देखो अब इसके अंदर पैगाम निकाह नहीं है, लेकिन बात भी पहुंच गई। وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه في القول المعروف, اور حضرت سعيد بن جبير رضی اللہ تعالی عنہ بھئی یہ بھی جلیل القدر تابعی گزرے ہیں بھئی, وہ فرماتے ہیں فی القول المعروف, قول معروف کے بارے میں بھئی قرآن میں کیا آیا الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ تم اچھی بات کہو, اچھے طریقے سے کہو, یعنی اشاروں میں بات کہو, اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں فی القول المعروف, قول معروف کے بارے میں, کہ یوں کہے انی فی کی لراغب, کہ میری بھی تم میں رغبت ہے, میری بھی تم میں رغبت ہے, اور یا یوں کہے و انی ارید ان نجتمع, میں چاہتا ہوں ہم اکٹھے ہو جائیں, तो इस तरह इशारों की नायों में पैगाम निकाह देने में कोई हरज नहीं है भाई। आगे देखिए वला यजूज़ु लिल मुतल्लकति रजईयति वल मब्तूतति खुरूज मिन बैतिहा लैलन वला नहारा, मैंने आपको बतलाया था भाई कि इद्दत के अंदर औरत पर पाबंदी है, वो घर से नहीं निकल सकती, अब उसको बयान करने लगे हैं। कहते हैं वला यजूज़ु लिल मुतल्लकति रजईयति वल मब्तूतति, और जायज नहीं है मुतल्लका रजईया के लिए भी, वल मब्तूतति और मब्तूता के लिए, यानी जिसको तलाके बाइन यतीन तलाके मिली हैं उनके लिए जायज नहीं है, अल खुरूज मिन बैतिहा, निकलना अपने घर से, लैलम वला नहारन, न रात को और न दिन को, वल मुतवफा अनहा ज़ौजुहा, और वो औरत की जिसके खावंद का इंतकाल हो गया है, तखरुजु नहारन, वो दिन को निकल सकती है, व बाज़ल लैली, और रात के कुछ हिस्से में, वला तभी तुफी गैरी मंजिलिहा, और वो रात न गुजारे अपने घर के अलावा, अपने घर के अलावा किसी और जगह यह रात न गुजारे। वजह आपको बतलाएंगे भाई कि मुतल्लका रजईया इसके लिए भी घर से निकलना हराम, और इसी तरह मबतूता जो है वो उसके लिए भी घर से निकलना हराम है। वजह ये उनका नफका खावन के जिम्मे है, तो उनको तो नफका मिल रहा है, लिहाजा घर से निकलने की कोई हाजत नहीं। लेकिन वो औरत जिसके खावन का इंतकाल हो जाए, याद रखो उसका नफका खावन के जिम्मे नहीं, खावन के जिम्मे नहीं, मतलब यह है खावन के माल में से नहीं है, खावन का तो इंतकाल हो गया है, लेकिन यह जो चार महीने दस दिन इसने गुजारने हैं, इनका नफका खावन के माल में से इसको नहीं दिलाया जाएगा भाई। तो लिहाजा अब अगर इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है और माल भी नहीं है, तो इसको हाजत पेश आ सकती है खाने पीने के लिए कामकाज की, तो इसको इजाजत होगी दिन के वक्त, लेकिन रात इसको इसी घर में गुजारना पड़ेगी भाई। और मतन में यह भी आया कि यह औरत दिन को भी निकल सकती है जिसके खावंद का इंतकाल हुआ है, वह बाज़ल लैली, और रात के कुछ हिस्से में भी। वजह यह कि बाज़ औकात काम के अंदर कुछ देर हो जाती है तो कुछ रात का इब्तदाई हिस्सा आ जाता है, मगरिब का वक्त आ जाता है, तो लिहाजा उसमें भी इजाजत होगी। तो कहते हैं वल मुतवफा अनहा ज़ौजुहा तखरुजु नहारन व बाज़ल लैली, और वो औरत जिसके खावन का इंतकाल हो गया है वो दिन को भी निकल सकती है, व बाज़ल लैली, और रात के कुछ हिस्से में भी, वला तभी तुफी गैरी मंजिलिहा, और वो रात नहीं गुजार सकती अपने घर के अलावा में। अम्मल मुतल्लकतु फलिकौलिही तआला, तो मुतल्लका जो है वो अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, यानी उसकी दलील यह है कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ला तुखरिजुहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यखरुजन इल्ला अन यातीन बिफाहिशतिन मुबय्यना। ला तुखरिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, इनको ये जो मुतल्लकात हैं इनको न निकालो, मिन बुयूतिहिन्ना इनके घरों से, वला यखरुजना और ना ये खुद निकलें, इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, मगर ये कि ये खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। ए खावंदो न तो तुम इन मुतल्लकात को इनके घरों से निकालो न ये खुद निकलें, इल्ला ये कि ये खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें जी। अब खुली बेहयाई से क्या मुराद है जी। तो अब वो बयान फरमा रहे हैं, कीला कहा गया है, अल्फाहिशतु नफ्सुल खुरूज, के फाहिशा नफ्स खुरूज है, यानी घर से निकलना ही यही फाहिशा है, यही खुली बेहयाई है, घर से निकलना ही खुली बेहयाई है। वकीला, और कहा गया है, अज़ज़िना, कि खुली बेहयाई से मुराद जीना है जी। अगर ये खुली बेहयाई करें फिर इनको निकाला जाएगा जी। ताकि इन पर हद कायम की जाए, मसलन इसने जीना किया है तो अब इसको हद कायम करने के लिए निकाला जाएगा, वैसे इनको घर से नहीं निकाला जाएगा, ना ये खुद निकलेंगी। तो पहला कौल जो है कि फाहिशा से मुराद नफ्स खुरूज है, यानी घर से निकलना ही ये क्या है, खुली बेहयाई है, ये हज़रत इब्राहीम नखई रहिमहुल्लाह का कौल है भाई। जबकि दूसरा माना कि खुली बेहयाई से मुराद जिना है, ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है भाई। तो कहते हैं, वकील अज़्ज़िना, और कहा गया है कि खुली बेहयाई से मुराद जिना है, वह यखरुजुन लिइकामतिल हद, और ये निकलेंगी हद कायम करने के लिए, कि इन पर हद कायम की जाए जब इन्होंने जिना किया है। अब देखो भाई, फाहिशा के दो माना बयान हुए, कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि इनको इनके घरों से ना निकालो और ना ये खुद निकलें, मगर ये कि ये खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। और खुली बेहयाई का क्या माना, एक माना बयान किया कि इसका मतलब है जिना, कि जब ये खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें यानी जिना कर लें और वो साबित हो जाए तो फिर ये घरों से निकलेंगी और इन पर हद कायम की जाएगी भाई। जबकि दूसरा माना यह किया कि खुली बेहयाई से मुराद नफ्स खुरूज है, घर से निकलना ही क्या है, खुली बेहयाई है। अब यह माना वाजे नहीं होता कि किस तरह घर से निकलने को खुली बेहयाई कहा गया है, क्योंकि पीछे आया है वला यखरुजना, ये घर से न निकलें, इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, मगर ये कि ये खुद निकलें, बात वाज़ह नहीं हो रही। अगर हम फाहिशा से क्या मुराद लें, नफ्स खुरूज, तो फिर बात वाजे नहीं होती। इसको अच्छी तरह समझ लें भाई। मसलन मैं आपके सामने एक जुमला बोलता हूं, लैसा ज़ैदुन इल्ला कातिबन, जैद नहीं है इल्ला कातिबन मगर कातिब ही। मसलन मुखातब का ख्याल है कि जैद कातिब भी है और शायर भी है, वो दोनों चीजें जानता है, वो कातिब भी है और शायर भी है भाई। तो मैं कहता हूं लैसा ज़ैदुन इल्ला कातिबन, जैद नहीं है मगर कातिब ही। ये तो लफ्जी तर्जमा हुआ, बामुहावरा तर्जमा कैसे करेंगे? हां शाबा ही का लफ्ज ले आएंगे, जैद कातिब ही है, जैद कातिब ही है। तो यहां इसी तरह देखो, देखो ये हाशिए के अंदर एक दो मिसालें दी हुई हैं, जरा इनको देख लो फिर आप पर बात वाजे हो जाएगी। कहते हैं ला यसुबुन नबिया इल्ला काफिरुन, के पैगंबर को गाली नहीं दे सकता इल्ला काफिरुन मगर काफिर ही। अब इसका बामुहावरा तर्जमा करो, ला और इल्ला को खत्म कर दो, काफिर ही पैगंबर को गाली दे सकता है। शाबाश, ये ही का लफ्ज हम ले आए, नफी खत्म हो गई, काफिर ही पैगंबर को गाली दे सकता है। इसी तरह अगला जुमला है वला यज़नी अहदुन इल्ला अन यकूना फासिकन, कि कोई शख्स जिना नहीं कर सकता इल्ला अन यकूना फासिकन मगर यह कि वह फासिक हो। अब जरा ला और इल्ला को खत्म करें, उसके बगैर तर्जमा करें, फासिक ही जिना कर सकता है। देखो नफी खत्म हो गई, नहीं का लफ्ज कहीं नहीं आ रहा, फासिक ही जिना कर सकता है, काफिर ही पैगंबर को गाली दे सकता है। यहां इसी तरह वला या खुरुजना इल्ला अयातीन अभी फाहिशतिन मुबैनतीन, तो यहां पर फाहिशा से क्या मुराद है? नफ्स खुरूज, निकलना। अब उसके मुताबिक तर्जमा करें वला यखरुजना, और ये औरतें खुद भी ना निकलें, इल्ला अयातीन अभी फाहिशतिन मुबैनतीन मगर ये कि वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। देखो देखो यूं तर्जमा होगा ला यखरुजना, नफी है ना, नफी को खत्म कर दो, और इनका निकलना, इनका निकलना खुली बेहयाई ही है
जी।
इनका निकलना खुली बेहयाई ही है। बात समझ में आ गई, ला और इल्ला को हमने खत्म कर दिया, और जो इल्ला के बाद था उसके बाद ही का लफ्ज ले आए, इनका बाहर निकलना खुली बेहयाई ही है। बात अब वाजे हो गई। यहां पर जहन में असल में इश्काल आता है कि यहां पीछे तो ला है, ला या खुरुजना तो नफी है, और आप क्या कह रहे हैं बाहर निकलना खुली बेहयाई ही है। तो वो मिसालों से वजाहत हो गई कि ला और इल्ला का बामुहावरा तर्जमा करें तो नफी खत्म हो जाती है, तो यहां भी नफी खत्म कर देंगे। फिर सुनो, अब तर्जमा सुनो आयत का कि ला तुखरिजू हुन्ना मिन बुयूती हिन्ना, कि ए खावंदो तुम इन मुतल्लकात को इनके घरों से न निकालो, वला यखरुजना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबैनतिन, और इनका घरों से निकलना खुली बेहयाई ही है भाई। बात वाज़े हो गई
जी।
अब देखिए तर्जमा, कील अल्फाहिशतु नफ्सुल खुरूज, कहा गया है कि फाहिशा नफ्स खुरूज है, यानी औरत का घर से निकलना यही फाहिशा है। वकील जिना, और कहा गया है कि फाहिशा जो है वो जिना है। वयखरुज नल इकामतिल हद, और फिर ये निकलेंगी हद कायम करने के लिए कि इन पर हद कायम की जाए। व अम्मल मुतवफा अनहा ज़ौजुहा, और बाकी वो औरत जिसके खावंद का इंतकाल हो गया है उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत है भाई। मैंने बताया क्योंकि उसके लिए कोई कमाने वाला नहीं तो उसको इजाजत होगी भाई। कहते हैं वह अम्मल मुतवफा अनहा ज़ौजुहा, और बाकी वो औरत जिसके खावंद का इंतकाल हो गया है। फली अन्नहु ला नफ़क़ता लहा, इसलिए क्योंकि उसके लिए तो कोई नफका नहीं है। फतहताजु इलल खुरूजी नहारन, तो ये मोहताज है दिन के वक्त निकलने के लिए। लितलबिल माआशी, रोजी तलब करने के लिए। वक़द यमतद्दु इला अन यहजुमल लैलु, और कभी ये तलब जो है लंबी हो जाती है। इला अन यहजुमल लैलु, यहां तक कि अचानक रात आ जाती है। हजमा यहजुमु का माना अचानक आना, इला अन यहजुमल लैलु, यहां तक कि अचानक रात आ जाती है। तो लिहाजा इसको दिन को भी निकलने की इजाजत होगी रोजी के लिए, और रात के इब्तदाई हिस्से में भी इजाजत होगी। वला कदालिकल मुतल्लकतु, और मुतल्लका तो ऐसी नहीं है कि उसके लिए नफका ना हो। لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَّةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَّةٌ دَارَّةٌ یاد رکھو دَرَّ يَدِرُّ دَرَّن اور دَرَّ يَدُرُّ دَرَّن باب نصارہ سے بھی ہے باب زاربہ سے بھی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جاری ہونا اور بہنا اور کثیر ہونا دارتن اس میں فاعل ہے کہتے ہیں ولا کذالک المطلقت اور مطلقہ ایسی نہیں ہے لان النفقت دارتن علیہا اس لیے کیونکہ نفقہ اس پر بہ رہا ہے اس پر جاری ہے یا اس پر کثرت سے جاری ہے من مال زوجہا اس کے خاوند کے مال میں سے حتی لو اختلعت علی نفقت عدتہا بھئی صورت یہ ایک عورت نے خاوند سے خلع کیا تو خلع کے اندر سابقہ تمام حقوق ساقط ہو جاتے ہیں خاوند کے بیوی پر ہوں یا بیوی کے خاوند پر ہوں نکاح سے متعلق نکاح کے علاوہ اگر کوئی بیع و شراء کی تھی وہ ادائیگی کرنا پڑے گی باقی حقوق ساقط ہو جاتے ہیں اور خلع طلاق بائن کے حکم میں ہے اور طلاق بائن کے بعد عورت عدت گزارتی ہے اور عدت کا خرچہ تو خاوند کے ذمے ہوتا ہے لیکن اگر ایک عورت نے خلع کیا خاوند سے کہ عدت کا نفقہ بھی تم مجھے نہ دینا تو اس عدت کے نفقے پر بھی خلع کر لیا تو پھر اس صورت میں بعض فقہا فرماتے ہیں یہ خلع والی ہے یہ مطلقہ ہے لیکن اس کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت ہوگی کیونکہ اس کو بھی نفقہ خاوند کی طرف سے نہیں مل رہا تو کہتے ہیں حتی لو اختلعت علی نفقت عدتہا یہاں تک کہ اگر عورت نے خلع کر لیا اپنی عدت کے نفقے پر قیل تو کہا گیا ہے انہا تخرج نہارن کہ یہ دن کو نکل سکتی ہے وقیل اور کہا گیا ہے لا تخرج کہ یہ نہیں نکل سکتی لانہا اسقطت حقہا اس لیے کیونکہ اس نے خود اپنا حق ساقط کر دیا فلا یبطل بہ حق علیہا لہذا اس پر جو شریعت کا حق ہے وہ ساقط نہیں ہوگا اپنا حق تو اس نے خود ساقط کیا ہے لہذا شریعت کا حق اس سے ساقط نہیں ہوگا بھائی تو اس پر پابندی ہوگی بھائی آگے دیکھیے وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ أَن تَعْتَدَّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهَا بِالسُّكْنَى حَالَ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ یہ معتدہ یاد رکھو یہ اپنے جس گھر میں رہتی تھی اسی کے اندر عدت گزارے گی تو کہتے ہیں وعلی المعتدتی اور معتدہ پر واجب ہے ان تعتد فی المنزل الذی کہ وہ عدت گزارے اسی گھر میں الذی یضاف الیہا کہ جس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے بسکنا رہائش کی وجہ سے کہ اس گھر میں یہ رہتی ہے تو اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے بھئی جس گھر میں عورت رہتی ہے اگرچہ وہ گھر خاوند کا ہے لیکن اس عورت کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے کہ یہ اس کا گھر ہے تو کہتے ہیں وعلی المعتدتی اور معتدہ پر واجب ہے ان تعتد فی المنزلی کہ وہ عدت گزارے اسی گھر میں الذی یضاف الیہا بالسکنا کہ جس کی نسبت اس عورت کی طرف کی جاتی ہے بالسکنا رہائش کی وجہ سے کہ اس گھر میں یہ رہتی ہے تو اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے حال وقوع الفرقتی والموتی جدائی یا موت کے واقع ہونے کی حالت میں عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی اسی گھر میں جس کی نسبت اس عورت کی طرف کی جاتی ہے رہائش کی وجہ سے کہ اس میں رہتی ہے حال وقوع الفرقت والموت یعنی جدائی اور موت واقع ہونے کی حالت میں جدائی اور موت واقع ہونے کی حالت میں عورت جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عدت گزارے گی یہ معنی ہے حال وقوع الفرقت والموت موت اور جدائی کی واقع ہونے کی حالت میں لقوله تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے لا تخرجوهن من بیوتهن کہ نہ نکالو ان عورتوں کو ان کے گھروں سے والبیت المضاف الیہا هو البیت الذی تسکنه اور وہ گھر جس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے وہ گھر ہوتا ہے الذی تسکنه جس میں یہ رہائش رکھتی ہے ولہذا لو زارت اہلہا یاد رکھو کہ یہ عورت اسی گھر میں عدت گزارے گی چنانچہ فقہا فرماتے ہیں اگر ایک عورت اپنے والدین کو ملنے گئی ہوئی ہے اور ادھر خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اس کو جیسے ہی خبر ملے فوراً واپس آ جائے اور عدت ادھر ہی اسی خاوند کے گھر میں گزارے بھائی کہتے ہیں ولہذا اور اسی وجہ سے لو زارت اہلہا زارہ یا زور کا معنی زیارت کرنا ملاقات کرنا ولہذا اور اسی وجہ سے لو زارت اہلہا اگر عورت نے زیارت کی اہلہا اپنے گھر والوں کی یعنی ماں باپ کے پاس وہ گئی ہوئی تھی وطلقہا زوجہا اور طلاق دے دی اس کو اس کے خاوند نے کان علیہا ان تعود الی منزلہا تو اس عورت پر واجب ہے کہ یہ لوٹ آئے اپنے گھر فتعتد فیہ اور پھر اس میں عدت گزارے وقال علیہ الصلاۃ والسلام للتی قتل زوجہا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے قتل زوجہا جن کے خاوند کو قتل کر دیا گیا تھا تو یہ عورت ان کے خاوند کو قتل کر دیا گیا تھا انہوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتی ہیں تو حضور نے کہا کہ نہیں اپنے اسی گھر میں رہو اور یہیں اپنی عدت پوری کرو بھائی تو کہتے ہیں وقال علیہ الصلاۃ والسلام للتی قتل زوجہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے جس کے خاوند کو قتل کر دیا گیا تھا اسکنی فی بیتی کی کہ تو اپنے اس گھر میں ٹھہری رہ حتی یبلغ الکتاب اجلہ کتاب یاد رکھو کتاب مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں تو یہاں کتاب مقررہ وقت کے معنی میں ہے اور اجل بھی مقررہ وقت کو کہتے ہیں تو یہاں اس کا ترجمہ کر لیں گے میعاد کے تو اس کنی فی بیتی کی تو اپنے گھر میں ٹھہری رہ حتی یبلغ الکتاب یہاں تک کہ مقررہ وقت پہنچ جائے اجلہ اپنی میعاد کو یعنی عدت اپنے میعاد کو پہنچ جائے بھائی وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيْتِ لَا يَكْفِيهَا صورت مسئلہ یہ ایک عورت ہے اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو وراثت کے اندر اس کے حصے میں مکان کا جو حصہ آیا وہ اس کی رہائش کے لیے کافی نہیں اور باقی رشتہ دار اپنے حصے میں چھوڑتے نہیں تو اب مجبوری ہے لہذا اس صورت میں عورت یہاں سے منتقل ہو سکتی ہے لیکن جہاں منتقل ہو جائے گی باقی ساری عدت پھر وہیں پوری کرے وہاں سے پھر دوبارہ منتقل نہ ہو پائے کہتے ہیں وہ ان کا نہ نصیب ہوا من دار المیتی اور اگر معتدہ کا جو حصہ ہے دار من دار المیتی مرنے والے کے گھر میں سے لا یکفیہا وہ اس کے لیے کافی نہیں فاخرجہا الورثۃ من نصیبہم تو رشتہ داروں نے بھی اس کو نکال دیا اپنے حصے سے انتقلت یہ عورت منتقل ہو جائے گی لان ھذا انتقال بعذر اس لیے کیونکہ یہ منتقل ہونا عذر کی وجہ سے ہے والعبادات تو اس فی حل آزارو اور عبادتوں کے اندر عذر مؤثر ہوتے ہیں یہ عدت بھی کیا ہے عبادت ہے تو عبادتوں کے اندر عذر مؤثر ہوتے ہیں فصار کما اذا خافت علی متاعها تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس عورت کو خوف ہے اپنے سامان پر بھئی ایک عورت ایک جگہ رہ رہی ہے خاوند کے گھر میں عورت عدت گزار رہی ہے لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں اس کو اپنے سامان وغیرہ کا خوف ہے کہ چوری کر لیا جائے گا تو پھر اس صورت میں اس کے لیے منتقل ہونا جائز ہے یہ اسی طرح وہ خاوند کا انتقال ہوا ہے وہ اس گھر میں رہ رہی ہے لیکن اس گھر کی حالت بڑی خراب ہے اس کے گرنے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی یہ عورت منتقل ہو سکتی ہے یا خاوند کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ عورت جس گھر میں رہ رہی ہے اس کو کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کے پاس تو کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہیں تو اس صورت میں بھی یہ عذر ہے یہ وہاں سے منتقل ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں فصار کما اذا خافت علی متاعها تو یہ اسی طرح ہو گیا کہ جیسے کہ اس کو خوف ہو علی متاعها اپنے سامان پر کہ سامان کو کوئی چوری کر لے گا یا کوئی اس کے سامان کو چھین لے گا اس سے او خافت سقوط المنزلی یا اس کو خوف ہے گھر کے گرنے کا او کانت فیہا بی اجرین یا یہ عورت اس گھر میں اجرت پر ہے یعنی کرایہ دیتی ہے ولا تجد ما تؤدی ہی اور یہ نہیں پاتی وہ چیز جس کو یہ ادا کرے یعنی اس کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہے تو پھر یہ منتقل ہو سکتی ہے آگے دیکھیے ثم ان وقعت الفرقۃ بطلاق بائن او ثلاث لا بد من سترۃ بینہما ثم لا بأس صورت مسئلہ یہ کہ خاوند نے بیوی کو طلاق بائن دے دی ہے یا تین طلاقیں دے دی ہیں اور حال یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں دونوں کی رہائش ہے اور کمرے ہیں ہی نہیں گھر کے اندر تو پھر اس صورت میں خاوند اور بیوی کے درمیان کسی پردے اور رکاوٹ کا ہونا ضروری ہے خاوند اور بی بی کے درمیان کسی پردے اور رکاوٹ کا ہونا ضروری ہے بھائی. تو اگر پردہ رکاوٹ بیچ میں موجود ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے, عورت وہاں وقت گزار سکتی ہے. تو کہتے ہیں ثم ان وقعت الفرقت بطلاق بائن او ثلاث, پھر اگر یہ جدائی واقع ہوئی ہے طلاق بائن سے یا تین طلاقوں سے, لا بد من سترت بینہما, سترا کہتے ہیں پردہ بھائی, اور آڑ, لا بد من سترت بینہما, تو ان دونوں کے درمیان پردے اور آڑ کا ہونا ضروری ہے, ورنہ تو اجنبیہ کے ساتھ خلوت لازم آئے گی اور یہ جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں ان میں پردے کا ہونا ضروری ہے. ثم لا بأس, پھر کوئی حرج نہیں ہے, لأنه معترف بالحرمت, اس لیے کیونکہ وہ خاوند خود اس کے حرام ہونے کا اعتراف کرنے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ اب یہ عورت میرے لیے حرام ہو چکی ہے تو اب کوئی حرج نہیں. الا ان یکون فاسقا, مگر یہ کہ خاوند فاسق ہو, یخاف علیہا منہ, اس عورت پر خوف ہو خاوند کی طرف سے کہ یہ حرام میں ہو چکی ہوں لیکن یہ پھر بھی پرواہ نہیں کرے گا. فحین اذن تخرج, تو اس وقت یہ عورت نکل سکتی ہے, لانه عذر, کیونکہ یہ عذر ہے, ولا تخرج عمن تقلت الیہ, اور پھر یہ عورت نکلے گی نہیں جہاں یہ منتقل ہو جائے, جہاں دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہے وہاں سے اب نہ نکلے. والاولا ان یخرج ہوا, اور بہتر یہ ہے کہ یہ خاوند نکلے, ویترکہا, اور اس کو چھوڑ دے اسی جگہ, جب ضرورت پیش آ گئی ہے دونوں میں سے ایک کا نکلنا ہے. تو عورت کے لیے تو یہاں رہنا واجب تھا, خاوند کے لیے تو یہاں رہنا واجب نہیں, تو وہ نکل جائے اور وہ کسی اور جگہ یہ وقت گزارے بھائی. تو کہتے ہیں ول اولا این یخرج ہوا, اور بہتر یہ ہے کہ خاوند نکلے, ویترکہا, اور عورت کو وہیں چھوڑ دے. وان جعل بینہما امرأتا ثقتا, اور اگر ان دونوں نے کر دیا اپنے درمیان کسی قابل اعتماد عورت کو, تقدیر علی الحیلولتی, جو دونوں کے درمیان حائل ہونے پر قادر ہے, فحسن, تو یہ اچھا ہے. تو اگر یہ کسی اور رشتہ دار عورت کو لے آتے ہیں اور وہ پھر ان دونوں کے درمیان اس عورت کے ساتھ آ کر رہتی ہے اور اس طرح وہ دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور رکاوٹ بن گئی, تو یہ بھی اچھی صورت ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِن جَعَلَ بَيْنَهُمَا امْرَأَةً ثِقَةً, اور اگر میاں بیوی نے اپنے درمیان کسی اور قابل اعتماد عورت کو کر دیا, تقدیر علی الحیلولتی, جو ان دونوں کے درمیان حائل ہونے پر قادر ہے, فحسنن, تو یہ بھی اچھا ہے. وَإِن ضَاقَ عَلَيْهِمَا الْمَنْزِلُ, اور اگر وہ گھر ان دونوں پر تنگ ہے, خاوند اور بیوی پر, یعنی وہاں رہنا مشکل ہے بھائی کیونکہ اب وہ اجنبیہ ہو چکی ہے, لیکن گھر اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں اب اجنبیہ کے طور پر وہ اپنا الگ وقت نہیں گزار سکتی بھائی. تو کہتے ہیں فل تا خروج, تو اس صورت میں اس بیوی بی کو وہاں سے نکل جانا چاہیے. ول اولا خروج, اور خاوند کا نکلنا اولا ہے بھائی, کیونکہ بیوی بی پر تو واجب ہے یہیں پر وہ وقت گزارے, لیکن خاوند پر تو یہاں وقت گزارنا واجب نہیں, وہ کوئی اور جگہ اپنا انتظام کر لے عدت کی مدت کے دوران. وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَى مَكَّةَ, صورت مسئلہ یہ کہ خاوند بیوی کے ساتھ سفر پر نکلا, مثلا مکہ کی طرف جا رہے ہیں دونوں, اور راستے میں خاوند نے اس کو تین طلاقیں دے دیں یا خاوند کا انتقال ہو گیا, تو اب کیا کریں؟ عورت کو تو نکلنے سے منع کیا گیا ہے, تو کیا اب یہ وہیں پر وقت گزارے گی یا واپس آ سکتی ہے یا آگے جا سکتی ہے؟ تو وہ اب تفصیل بیان فرمائیں گے. کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَى مَكَّةَ, اور جب عورت نکلی اپنے خاوند کے ساتھ مکہ کی طرف, فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِي غَيْرِ مِصْرٍ, تو خاوند نے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں یا خاوند اس کو چھوڑ کر مر گیا, فِي غَيْرِ مِصْرٍ, شہر کے علاوہ میں, یعنی کہیں جنگل کے اندر ہیں, راستے میں ہیں, وہاں خاوند نے تین طلاقیں دی ہیں یا وہاں خاوند کا انتقال ہوا ہے. فَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِهَا, جی اب آپ کو بتائیں گے, اگر ان کا جو اپنا شہر تھا اس سے تین دن سے کم کی مسافت ہے, یعنی مدت سفر سے کم فاصلے پر ہے ان کا اپنا شہر, تو اس صورت میں پھر عورت واپس لوٹ آئے. تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِهَا, تو اگر اس عورت کے اور اس کے شہر کے درمیان اقل من ثلاثۃ ایام, تین دن سے کم کا سفر ہے, رجعت الى مصرها, تو یہ اپنے شہر لوٹ آئے, لانه ليس بابتداء الخروج معنا بل هو بناء, भाई ये कैसे अपने शहर वापस लौटा, ये तो मुअत्तदा है और मुअत्तदा के लिए तो बाहर निकलना मना है भाई, तो यहां तो इसको सफर करना पड़ेगा वापस जाने के लिए। कहते हैं भाई ये इब्तिदाए खुरूज नहीं है, इस वक्त ये इब्तिदाए खुरूज नहीं कर रही, इब्तिदाए खुरूज तो पहले का हो चुका है, ये औरत हालत सफर में है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु लैसा बिइब्तिदाइल खुरूज मानन, इसलिए क्योंकि औरत का वापस लौटना यह इब्तिदाए खुरूज नहीं है माना के एतबार से, बल हुआ बिना उन, बल्कि यह उस पर मबनी है, यह उसी खुरूज अव्वल पर मबनी है, लिहाजा यह इब्तिदाए खुरूज नहीं है। अगर यह इब्तिदाए खुरूज होता तो यह जायज ना होता औरत के लिए, यहीं पर इद्दत गुजारती, लेकिन यह तो इब्तिदाए खुरूज नहीं है बल्कि उस खुरूज अव्वल पर, ये जो इसकी वापसी है इसका लौटना है इसकी बुनियाद खुरूज अव्वल पर है भाई, पहले से ही खुरूज हो चुका है भाई। तो ये माना है बल हुआ बिना उन, बल्कि ये तो उसी पर बुनियाद है। वह इन कानत मसीरतु सलासती अयामिन, और अगर वो औरत और उसके शहर के दरमियान तीन दिन की मसाफत है, इन शाअत रजात व इन शाअत मजत, तो इस औरत को इख्तियार है, इन शाअत रजात चाहे तो वापस लौट जाए अपने शहर, व इन शाअत मजत और अगर चाहे तो चली जाए, यानी अपने मकसूद की तरफ जिस जगह का इरादा किया था। सवा उनका न माहा वली यून अवलम यकुन, बराबर है कि इसके साथ कोई वली हो या ना हो, चाहे इसके साथ वली महरम वगैरह कोई है या नहीं है, ये इसको इख्तियार है, वापस भी जा सकती है और आगे भी जा सकती है, लेकिन साहिब हिदायत बतलाएंगे ये उस सूरत में है जब दोनों तरफ मुसाफत बराबर हो, अपने वतन से भी तीन दिन की मसाफत है और जहां जा रहे हैं वहां पर की भी तीन दिन की मसाफत है, और अगर कोई एक इनमें से कम है तो वही मुतायन है, उसी की तरफ ये जाएगी भाई। तो कहते हैं माना हु इजा काना इलल मकसिदी सलासत अयामिन ऐजा, कहते हैं माना इसका यह है कि जो वो जगह जिसका इसने इरादा किया है वो भी तीन दिन की मसाफत पर हो, अपना शहर भी तीन दिन की मसाफत पर और मकसद यानी जहां का उसने कस्द किया है वो भी तीन दिन की मसाफत हो, तो इसको इख्तियार है। और मालूम हो गया अगर दोनों बराबर नहीं है फिर औरत को इख्तियार नहीं है, फिर जो कम है उसी की तरफ जाना पड़ेगा उसको। कहते हैं लिअन्न अल-मुकसफी दालिकल मकानी मकसा यमकुसु मुकसउ व मकसन, बाबे नसारा से है मकसा यम कोसु, और इसका मसदर मुकसन भी आता है और मकासन भी आता है काफ के फतहा के साथ। तो कहते हैं लिअन्न अल-मकसा फी ज़ालिकल मकानी अखवफु अलैहा मिनल खुरूजी, लिअन्न अल-मकसा फी ज़ालिकल मकानी, क्योंकि उस जगह पर ठहरना जंगल में है भाई, उस जगह पर उस औरत के लिए ठहरना अखवफु अलैहा, यह ज्यादा खौफ वाला है उस औरत पर मिनल खुरूजी निकलने के मुकाबले में, वहां रहेगी वहां भी खौफ और निकलेगी तब भी सफर में अकेली है तब भी खौफ, लेकिन वहां ठहरना वो ज्यादा खौफ वाला है भाई। तो ये माना है लिअन्न अल-मकसा फी ज़ालिकल मकानी, क्योंकि इस औरत के लिए वहां उस जगह पर ठहरना अखवफ अलैहा, ये इस पर ज्यादा खौफ वाला है मीनल खुरूजी वहां से निकलने के मुकाबले में, इल्ला अन्न रुजू औला, मगर ये कि इस औरत का वापस लौटना औला है, दोनों जानिबें बराबर हैं जिधर मर्जी चली जाए लेकिन वापस लौटना औला है और बेहतर है, लियकून अल-इतदादु फी मंजिलिज़ ज़ौजी, ताकि इद्दत का गुजारना खावंद के घर में हो। قال الا ان يكون طلقها او مات عنها زوجها في مصر, दूसरी सूरत खावंद और बीवी मक्का के लिए चल पड़े और रास्ते में खावंद ने तीन तलाकें दी या खावंद का इंतकाल हुआ और उस वक्त ये रास्ते में एक शहर के अंदर थे, अब जंगल में नहीं है बल्कि शहर में है। तो قال امام محمد رحمه الله جامع صغير में फरमाते हैं الا ان يكون طلقها او مات عنها زوجها في مصر, मगर ये कि इस औरत को खावन तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए في مصر शहर में, فانها لا تخرج حتى تعتد, तो امام ابو حنيفه رحمه الله फरमाते हैं तो ये औरत अब नहीं निकलेगी उसी शहर में इद्दत गुजारेगी, फिर नहा ला तखरुजु हत्ता तातद्दा, कि अब यह औरत वहां से नहीं निकलेगी यहां तक कि इद्दत गुजार ले, सुम्मा तखरुजु इनका न लहा महरमुन, फिर उसके बाद निकलेगी अगर उसके लिए महरम है, क्योंकि तीन दिन से ज्यादा की मसाफत पर है इसका घर, तो आप वापस भी जाना चाहती है तो किसके साथ जाएगी? महरम के साथ। तो कहते हैं सुम्मा तखरुजु, इद्दत गुजारने के बाद फिर ये निकलेगी, इन कान अल्लाह महरम, अगर इसका कोई महरम है, वहां दा आइंदा अभी हनीफत रहमला, ये इमाम साहब के नजदीक है। तो इमाम साहब के नजदीक रास्ते में शहर के अंदर तलाक मिली है या खावंद का इंतकाल हुआ है तो वहीं इद्दत गुजारेगी और उसके बाद फिर वापस जाएगी अगर इसके साथ कोई महरम हो पाई। तो कहते हैं वहाद आइंदा अभी हनीफत रहमला, ये इमाम साहब के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद उन रहमहुमल्ला, और साहिबैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं इन कान माहा महरम उन फला बस भी अंत खुरुजा मिनल मिस्री कबल अंत आतदा। साहिबैन फरमाते हैं अगर इस औरत के साथ महरम मौजूद है तो फिर कोई हरज नहीं, ये वापस अपने शहर जा सकती है भाई, इद्दत वहीं जाकर पूरी कर ले। इमाम साहब तो फरमाते हैं नहीं, इद्दत यहीं गुजारना पड़ेगी, लेकिन साहिबैन फरमाते हैं अगर महरम साथ मौजूद है तो वो वापस जा सकती है। तो कहते हैं साहिबैन फरमाते हैं इन काना माहा महरम उनके, अगर इस औरत के साथ महरम है फला बासा बी अंत खुरुजा मिनल मिस्री, तो फिर कोई हरज नहीं है कि उस शहर से निकले कबल अंत अतदा, इद्दत गुजारने से पहले। लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्ना नफ्सल खुरूज मुबाहुन, कि नफ्स खुरूज तो मुबाह है, इस औरत का यहां से निकलना तो मुबाह है, इस औरत का इस शहर से निकलना मुबाह है। क्यों? दफअन लि अज़ल गुरबती व वहशतिल वहदती। अज़ा कहते हैं तकलीफ को, गुरबत कहते हैं परदेश और बेवतनी को। तो कहते हैं दफअन लि अज़ल गुरबती, बेवतनी की तकलीफ को दूर करने के लिए। जब इंसान अपने वतन से दूर है, सफर में है, तो जाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ में होता है, जितनी भी राहतें हों फिर भी जो इत्मीनान और सुकून अपने घर में होता है वो बाहर तो कहीं नहीं होता। तो लिहाजा बेवतनी की तकलीफ को दूर करने के लिए वह वहशतिल वहदती, और नीस अकेले होने की वहशत को, तन्हाई की वहशत। यह औरत सफर में थी, खावंद के साथ जा रही थी, अब वहां ना इसका कोई जान पहचान वाला भी कोई नहीं है, तो अकेले होने की वहशत भी होगी और बेवतनी की तकलीफ भी होगी, लिहाजा इसके लिए निकलना तो मुबाह है, वापस जाना मुबाह है। हां सिर्फ एक रुकावट आ रही थी, याद रखो सफर से कम मिकदार जो है, यानी तीन दिन से कम मसाफत की जगह हो तो वहां औरत तन्हा भी जा सकती है, लेकिन तीन दिन के मसाफत हो तो फिर वहां तन्हा औरत के लिए जाना जायज नहीं। तो साहिबैन फरमाते हैं कि इस औरत के लिए वापस जाना तो वैसे भी मुबाह था, इसलिए क्योंकि यहां बेवतनी की भी तकलीफ थी और नीज तन्हाई की वहशत भी थी, तो इसके लिए मुबाह था वापस जाना, लेकिन एक मान्या था कि वापसी सफर के बकदर थी और इसके साथ कोई महरम नहीं था, लेकिन जब महरम मौजूद है तो अब मान्या भी खत्म हुआ, लिहाजा अब ये वापस आ सकती है महरम के साथ, इद्दत गुजारने से पहले ही भाई। लहुमात साहिबैन की दलील यह है कि अन्ना नफ्सल खुरूज मुबाहुन, कि नफ्स से निकलना तो इस औरत के लिए मुबाह है, जायज है। दफअन लि अदल गुरबती, बेवतनी की तकलीफ को दूर करने के लिए। वहशतिल वहदती, और अकेले होने की वहशत को दूर करने के लिए। वहादा उज़रुन, और यह उज़र है, ये उजर है, इस उजर की वजह से उसके लिए निकलना जायज होगा। वही नमल हुरमतुल सफरी, और हुरमत जो थी वो सफर की वजह से थी, कि मसाफत कितनी थी, सफर के बकदर थी, तीन दिन या इससे ज्यादा थी। वह कदिर तफात बिल महरमी, और तहकीक वह हुरमत भी उठ गई, खत्म हो गई, बिल महरमी महरम की वजह से, तो उसके साथ सफर कर सकती है। वह लहू, इमाम साहब की दलील यह है, इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, वहीं इद्दत गुजारेगी, चाहे महरम ही क्यों ना हो साथ, वहीं इद्दत गुजारेगी। वलहू, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल इद्दत अमनाउ मिनल खुरूज मिन अदमिल महरमी, कि इद्दत जो है अमनाउ, वो ज्यादा रोकने वाली है, मिनल खुरूज निकलने से, मिन अदमिल महरमी, महरम न होने के मुकाबले में। भाई देखिए, इमाम साहब फरमाते हैं कि महरम का न होना यह भी औरत को निकलने से रोकता है, और इद्दत भी औरत को निकलने से रोकती है। महरम नहीं है तो औरत सफर पर नहीं जा सकती, तो महरम का न होना भी औरत को निकलने से रोकता है, और इद्दत के अंदर भी औरत को हुक्म है न निकलने का, तो इद्दत भी औरत को रोकती है। लेकिन इद्दत ज्यादा रोकने वाली है आदम महरम के मुकाबले में। महरम नहीं है तब भी औरत नहीं निकल सकती, इद्दत है तब भी नहीं निकल सकती, लेकिन इद्दत ज्यादा रोकने वाली है आदम महरम के मुकाबले में। भाई किस तरह इद्दत ज्यादा रोकने वाली है? कहते हैं भाई देखो, ये जो आम औरत होती है जो इद्दत में नहीं है, जो आम औरत है, ये 3 दिन से कम मसाफत की जगह हो तो ये तन्हा भी जा सकती है बगैर महरम के
जी।
लेकिन 3 दिन की मसाफत है या इससे ज्यादा है तो फिर बगैर महरम के जायज नहीं
जी।
मालूम हुआ कि बगैर महरम के घर से निकलना औरत के लिए जायज है
जी।
लेकिन इद्दत के अंदर तो सफर से कम जगह भी हो फिर भी औरत के लिए निकलना जायज नहीं। मालूम हुआ इद्दत ज्यादा रोकने वाली है औरत को निकलने से
जी।
तो वह लहू इमाम साहब की दलील यह है कि अनल इद्दत अमनाउ, की जो इद्दत है यह ज्यादा रोकने वाली है मिनल खुरूज, निकलने से। यह इद्दत निकलने से ज्यादा रोकने वाली है, यूं तर्जमा करें अनल इद्दत अमनाउ मिनल खुरूज। ये मीन जो है मना का सिला है और मीन अगला जो आ रहा है वो मुकाबले के लिए है जो इसमें तफजील के साथ इस्तेमाल होता है। वलहु इमाम साहब की दलील यह है अनल इद्दत अमनाउ मिनल खुरूजी, कि ये जो इद्दत है ये खुरूज से ज्यादा रोकने वाली है मिन आदमिल महरमी, आदम महरम के मुकाबले में। इद्दत भी रोकती है निकलने से और आदम महरम भी रोकता है निकलने से, लेकिन इद्दत ज्यादा मान्या है भाई। फइन लिल मरअती अन तखरुज इला मा दून सफरी बगैर महरमिन, इसलिए क्योंकि औरत के लिए जायज है कि वो निकल सकती है इला मा दून सफरी सफर से कम के अंदर बगैर महरमिन बगैर महरम के। वलैस लिल मुअतद्दति ज़ालिका, और मुअतद्दा के लिए तो ये भी जायज नहीं कि वो सफर से कम जगह हो तो भी घर से नहीं निकल सकती। फलम मा हरुमा अलैहा अल खुरूज इला सफरी बगैर महरमि फफिल इद्दति औला। फलम मा हरुमा अलैहा, जब इस औरत पर हराम है अल खुरूज इला सफरी सफर पर निकलना बगैर इल महरमी बगैर महरम के
जी।
सफर पर निकलना बगैर महरम के इस औरत पर हराम है तो इद्दत के अंदर बतरीके औला हराम होगा भाई। लिहाजा ये औरत वहीं इद्दत गुजारेगी। दलील भी समझ में आई कि नहीं भाई? देखिए इमाम साहब फरमाते हैं कि रास्ते में सफर के अंदर किसी शहर के अंदर खावंद का इंतकाल हुआ या उसने 3 तलाकें दी हैं तो ये औरत चाहे इसके साथ महरम ही क्यों ना हो फिर भी ये वहीं पर इद्दत गुजारेगी। वजह यह कि इद्दत ज्यादा रोकने वाली है निकलने से
जी।
तो जब इसका वतन 3 दिन या इससे ज्यादा की मुसाफत पर है तो जब वो बगैर महरम के निकलना इस सफर पर इसके लिए मना था तो इद्दत के अंदर बतरीके औला मना होगा क्योंकि इद्दत गैर महरम से ज्यादा रोकने वाली है
जी।
बात समझ में आ गई, दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं फलम मा हरुमा अलैहा अल खुरूज इला सफरी, तो जब इस औरत पर हराम है सफर पर निकलना बगैर अल महरमी बगैर महरम के फफिल इद्दती औला, तो इद्दत के अंदर बतरीके औला इस पर सफर पर निकलना हराम होगा, तो महरम के साथ भी नहीं निकल सकती भाई। बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।